ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। गुड इवनिंग आप सभी भाई बहनों का मैं भी आज के इस सत्र में बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। थैंक्स फॉर योर वार्म वेलकम एंड योर स्वीट इनविटेशन। मुकेश भाई जी ने मेरा संक्षिप्त में परिचय दिया, लेकिन एक बात मुझे लगा कि मैं खुद बोलना चाहिए, इसलिए जब वो मुझसे पूछ रहे थे तो मैंने ज्यादा बात तो नहीं बताई। लेकिन एक बात जो मैं अपने बारे में आप सबसे शेयर करना चाहता हूं कि मैं भी इस वैल्यू एजुकेशन कोर्स का स्टूडेंट हूं, विद्यार्थी हूं। एक दो जो मैंने MBA यहां से किया है और हर साल मैं कुछ ना कुछ कोर्स करता रहता हूं, और इस बार भी आई विल बी अपियरिंग फॉर द एग्जाम्स ऑफ वैल्यूज इन हेल्थ केयर। ओके, तो जब एक विद्यार्थी एक दूसरे विद्यार्थी से मिलता है तो कुछ सिखाता नहीं है, लेकिन क्या करेंगे, वी विल हैव अ वेरी ब्यूटिफुल हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। ओके, तो कम्युनिकेशन स्किल्स पर तो मैंने ज्यादा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं बनाया, बट मैं अपने कुछ एक अनुभव जरूर शेयर करूंगा, और लास्ट में मैं आप सभी के लिए अपना एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप सभी को दूंगा, और एक पर्टिकुलर विषय पर, एक सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट है द आर्ट ऑफ लीडरशिप, उस पर काफी इंडस्ट्रीज में मुझे बुलाया जाता है। तो मैं वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको मैं बताऊंगा कि जब वो सेवा के लिए हम वहां पर जाते हैं तो ये हम PPT प्रेजेंट करते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप इस पूरे लेक्चर के बाद आपका कुछ फीडबैक होगा कि इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या इसको हम किस तरह से और इम्प्रूव कर सकते हैं, लीडरशिप नेतृत्व कला, तो हम एंड में आपको थोड़ा सा जरूर बताएंगे। ओके, अच्छा, तो वी विल हैव इन कम्युनिकेशन स्किल्स वी आर गोइंग टू हैव अ ब्यूटिफुल हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, दिल से दिल की बातों का लेन देन होगा। आप सभी भी मुझसे बात करेंगे, जो बात करेंगे वो जरा हाथ उठाएं। अरे वाह, वेरी गुड। वैसे मैं अभी कुछ दिलवालों से मिल रहा था। दिलवाले आप सभी जानते हैं जो CAD के पेशेंट्स होते हैं, राइट? उनको बहुत प्यार से डॉक्टर सतीश गुप्ता जी उनको दिलवाले कहते हैं। तो अभी नीचे में उतरते ही साथ हमारे एक दिलवाले भाई मिल गए, तो बोला स्वामी भाई चलो चलो थोड़ा फ्रूट खा के जाओ। तो मैं उनके साथ फ्रूट खाने के लिए गया, तो मुझे डॉक्टर सतीश गुप्ता जी की एक बहुत अच्छी बात लगती है। वो हमेशा अपने लेक्चर्स में एक बहुत सुंदर शायरी सुनाते हैं, जब वो कहते हैं अगर खोल दिया होता अपना दिल अपनों से, वो कहते हैं अगर खोल दिया होता अपना दिल अपनों से, ना खोलना पड़ता अपना दिल औजारों से। तालियां तालियां। तो बेसिकली व्हेन एज अ फैकल्टी जब आप किसी भी ऑडियंस के सामने जाते हो तो यही करना होता है। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट इज योर कंटेंट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अपने क्या बनाया, कौन कौन से वीडियो सब दिखा रहे हैं, वो इतना महत्व नहीं लगता मुझे, लेकिन उससे ज्यादा महत्व है इस योर हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। और एक बहुत सुंदर विधि है टू हैव अ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन इज बाय लिसनिंग टू अ सॉन्ग, एक अच्छा सा गीत सुनना। तो आज हम शुरू करते हैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के इस टॉपिक पर, और मैं शुरू करता हूं मेरा रिसेंटली एक महीने पहले का एक बहुत सुंदर अनुभव, और वो एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, और उस समय पर उस सिचुएशन में स्वामी भाई ने किस तरह से रिएक्ट किया वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन आप सभी क्योंकि अनुभवी हैं, आप बताना कि उस समय अगर हाउ वुड हैव बीन द बेस्ट वे वेयर स्वामीनाथन वुड हैव रिएक्टेड। मैं आपको उस केस स्टडी बताता हूं, कोई बहुत पहले की बात नहीं है। एक महीने पहले मैं कहीं पर सेवा कर रहा था, तो जब मैं एक पब्लिक प्रोग्राम था, शाम का पब्लिक प्रोग्राम था, टॉपिक था वाह जिंदगी वाह। क्या टॉपिक था, थोड़ा खुशी से बोलिए ना। हाँ, तो टॉपिक वाह जिंदगी वाह था, और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करिए जरा, वाह जिंदगी वाह का इंग्लिश ट्रांसलेशन करिए। कभी कभी बहने मुझे फोन करते हैं, स्वामी भाई हिंदी में तो ठीक है, लेकिन हमारे ऐसे बहुत सारी पब्लिक है जो इंग्लिश जानते हैं, तो उसे इंग्लिश ट्रांसलेशन करिए, वाह लाइफ वाह, वाह 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 वाह। अरे वाह लाइफ वाह, और बताइए। अब बहन मुझे बीच बीच में पूछते हैं कैन यू गिव मी द इंग्लिश ट्रांसलेशन, कौन सा, वाह वाइफ वाह, क्या बोलते हैं, हाँ वाइफ वाह। अच्छा वाह नहीं, लाइफ तो हो गया, अभी मुझे वाइफ सुनाई दिया, सॉरी सॉरी है भाई, ये आध्यात्मिक मंच है, मैं वही सोच रहा क्या बोल रहे भाई जी वहां बैठकर। अच्छा क्या होगा इंग्लिश ट्रांसलेशन, हाँ जी बेस्ट लाइफ, वाह वाह वाह, वाह लाइफ इज वंडरफुल। अब समझना ये है, देखो इसमें से समझना ये है कि हर चीज का ना वैसा का वैसे आप ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हो, राइट? ये बात समझना बहुत जरूरी है कि वहां जिंदगी, वहां वो हिंदी में कॉइन होता है, लेकिन अगर आप उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करोगे ना तो नहीं जमेगा, फिर वो वाह वाइफ वाह हो जाएगा, नहीं जमता है ना। तो फाइनली मैंने उनका जो टॉपिक बताया, आप इससे भी अच्छा अगर होगा तो आप मुझे शेयर करना, तो मैंने उनको टॉपिक बताया सेलिब्रेटिंग लाइफ विथ हैप्पीनेस। ओके, सेलिब्रेटिंग लाइफ विथ हैप्पीनेस। अब सेलिब्रेटिंग लाइफ विथ हैप्पीनेस अगर आप हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो जीवन को आप उत्सवमय कैसे बनाएं? अब डायरेक्ट ट्रांसलेशन तो ये होता है, कहने का भाव ये कि हर शब्द का वैसे ट्रांसलेशन नहीं होता। अब मैं आपको केस स्टडी बताता हूं। तो जब मैं वो स्टेज पर गया, तो जैसे हमारा प्रोग्राम होता है ना, तो गेस्ट को बुलाते हैं, तो मैं भी स्टेज पर आया, जो कैंडल लाइटिंग के भाई बहने थे वो भी स्टेज पर आए, हमारे दीदी जी भी साइड पर बैठे थे, और बाबा की याद से शुरुआत हुआ, फिर बुके दिया, बैजेस दिया, वो सब ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। फिर वेलकम सॉन्ग था, तो वेलकम सॉन्ग में कन्या वॉज सपोज टू डू दैट वेलकम सॉन्ग। छोटी सी बच्ची थी, करीब मे बी शी मेट बी स्टडिंग इन 6th to 8th standard, वो बच्ची थी। तो क्या हुआ, वो बच्ची स्टेज पर आई और वो जो भाई जो था जो माइक को संभाल रहा था, वो उसका जो गीत था ना उसका मोबाइल फोन पर उसने सेट किया था, और आजकल मोबाइल फोन पे बहुत जल्दी इजिली सेट होता है। तो वो समर्पित भाई थे, बाबा के बच्चे थे, तो उसने उसको सेट किया। जैसे ही वो गीत चालू हुआ दो, और ये बच्ची डांस करने लगी, 2 मिनट के बाद अचानक क्या हुआ, उनका कोई फोन आ गया या कुछ हो गया और गीत बंद हो गया और ट्रिन ट्रिन बजने लगा। अब वो बच्ची एकदम रुक गई, एकदम सब लोग सब उसको देखने, उसे फटाफट बंद किया, ठक ठक ठक। तो दीदी भी बैठते, मैं कहने कोई बात नहीं कोई बात नहीं, और दीदी ने बहुत बहुत प्यार से दृष्टि दी उसको, उस बीके भाई को। तो उसने फटाफट बंद किया और फिर उसने उसको फिर से लगाया, तो दीदी ने कहा चलो चलो, बच्ची शी वॉज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल, तो दीदी ने कहा करो करो करो, तो मैंने भी कहा बच्ची करो कोई बात नहीं। अब फिर उसने डांस स्टार्ट किया, जैसे ही डांस करके 2 मिनट वहां तक पहुंचा ना, फिर गीत चालू हो गया और 7:30 का ट्रैफिक कंट्रोल है, शिव की याद रहेगी, तन यहां पर होगा मन वहां पर होगा, फिर वो ठक ठक बंद किया और पब्लिक भी इतना जोर से रिएक्ट की, हंसने लगी, ये बच्ची इतनी जोर से रोने लगी, रोते 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 वो साइड पर भागी, तो जो वहां जो बहने थे उनको संभालने की कोशिश की, अब हम लोग भी उसको देखने लगे, तो सारा माहौल ऐसा हो गया। अब वो जाके समझा रहे, अब डांस करो डांस करो, अब बहन जी का प्यार की दृष्टि बढ़ती जा रही है, अब वो बेचारा क्या करे, ठीक है ना। अब उनको रिक्वेस्ट किया कि आप डांस करो, तो और इतना वो रोने लगी और क्या की, रोते 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 तब तक उसकी मामा बैठी थी ऑडियंस में, तो मामा सामने आने लगी और इस बच्ची ने वो कोने से देखा कि मामा आ रही है, तो ये बच्ची ने क्या किया, सबके सामने वो स्टेज से दौड़ते दौड़ते मां से जाकर रिपटने लगी और बहुत जोर से रोने लगी। तो मां ने उसको संभाला और उसको धीरे से लेकर गई। तो अब वो जो बहन जी जो कंपेयरिंग कर रहे थे, छोटी बहन ने उसने दीदी को देखा, तो दीदी का प्यार का दृष्टि बढ़ता जा रहा था, तो दीदी ने कहा दो अब स्वामी भाई को माइक दो। फिर उसने स्वामी भाई को वो ज्यादा बोल नहीं पाई क्योंकि सारा माहौल ऐसा हो गया था। अभी हमारे भ्राताश्री आए हैं, बहुत वरिष्ठ भाई हैं, बहुत अच्छे भाई हैं, वो वाह जिंदगी वाह पर लेक्चर देंगे। अब माहौल कैसा हो गया था, अब मेरे हाथ में माइक, वाह जिंदगी वाह। अब आप बताइए, आप सभी हमारे दोस्त हैं, हमारे सारे क्लासमेट्स हैं, आप हमें बताइए कि ऐसे समय पर स्वामी भाई को क्या करना चाहिए, बताइए। आप होते वहां तो क्या है, मैं नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि व्हाट वुड हैव बीन द बेस्ट वे विच स्वामी भाई शुड हैव डन दैट। क्या करना चाहिए, ओम शांति करना चाहिए, वाह। बताइए क्या करना चाहिए, और ये 1 महीने पहले की घटना है, क्या करना चाहिए बताइए। हां जी, वाह मोबाइल वाह, अच्छा वहां मोबाइल वहां से स्टार्ट करना चाहिए, अच्छा और बताइए। प्लीज ना, आप सभी तो हमारे, आपने प्रॉमिस किया था कि यू विल हैव अ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। मैंने वहां क्या रिएक्ट किया मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं इससे भी बेटर ऑप्टिमम सॉल्यूशन था क्या, मुझे नहीं पता, जो स्वामी भाई कुड हैव कम्युनिकेटेड बेटर। यस भाई जी, आप खड़े थे, बोलिए। हाँ, तो वो बोल रहे स्वामी भाई आप स्टेज से धीरे से नीचे उतरिए, बच्ची को सांत्वना देने की कोशिश करिए और हो सके तो उनको लेकर आकर फिर से डांस करवाइए. ओके, दिस कुड बी वन ऑफ द मैकेनिज्म. हो सकता है, गुड. और बताइए, इसमें एक रिस्क भी है, पता नहीं वो बच्ची नहीं आएगी तो मैं क्या करूंगा फिर. वो रिस्क था मेरे मन में, वो संकल्प आया, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था बच्ची नहीं आई तो मैं क्या करूंगा. और फिर वो बहन जी, छोटी बहन जी ने अनाउंसमेंट किया, बहुत 20 वर्ष से राजयोगी हैं, है ना, बहुत शक्तिशाली हैं, अब ये छोटी बच्ची को स्टेज पर नहीं लेकर आए, तो डर भी लग रहा था और रिस्की सिचुएशन था. ठीक है, अच्छा क्या करेंगे बहन जी, बताइए. अच्छा, बीती को बिंदी. हाँ, एग्जैक्टली. जब आप ऐसे सिचुएशन हो रहा है ना, तो बिल्कुल उस सिचुएशन को माइंड ही नहीं करें और अपनी गाड़ी को चलाएं. यस, यू आर राइट. ये बहन जी के लिए जोर से तालियां बजाइए, हमारी अच्छी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है. वेरी गुड, क्योंकि मैंने यही किया. लेकिन मैं ये केस स्टडी आपके सामने इसलिए रख रहा हूं, आप दो दिन तक हैं, अगर आपको बेटर सोल्यूशन नजर आता है, भाई जी ने बताया, बहन ने बताया, फिर वहां मोबाइल वाह ऐसे कुछ सोल्यूशन आए. लेकिन अगर आपको लगता है कभी ऐसे सिचुएशन हो तो इज देयर अ बेटर सॉल्यूशन, अगर बेटर सॉल्यूशन है तो एंड में मैं अपना ईमेल आईडी दूंगा, कभी भी आपको ऐसा लगेगा तो मुझे मेल करके जरूर जरूर बताना, क्योंकि हमारा हर दिन का ही कभी बहुत जगह हम लोग ऐसे प्रोग्राम करते हैं, तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए. कभी कभी प्रोग्राम करते करते अचानक लाइट बंद हो जाता है, ऐसे भी मेरे साथ हुआ. क्यों बंद हुआ मैंने पूछा, तो वहां की दीदी ने कहा, स्वामी भाई आपका योग ठीक नहीं है, है ना. तो मैंने कहा ठीक है, अब हमारी बहनों के लिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सिस्टर्स, एंड दैट इज द राइट सॉल्यूशन. कोई भी भाई या बहन जीवन का, विश्व का कितना भी बड़ा प्रॉब्लम लेकर बहन के पास आए ना, तो बहन जी के पास एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, बाबा के कमरे में जाओ, योग करो. ठीक है ना, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दैट इज द ओनली ऑप्टिमम सॉल्यूशन. तो कभी ऐसा होगा ना, तो मुझे मेल करना, स्वामी आपका योग नहीं है, थोड़ा योग करो, ज्यादा भाषण कर रहे हो, एंड दैट इज द राइट आंसर. अच्छा, मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूं. ये वाह जिंदगी वाह, मैंने उस समय एक बहुत सुंदर कहानी सुनाई. वो कहानी आप लोगों ने बहुत बार टीवी में सुनी भी होगी, पता नहीं, लेकिन मैं फिर से वो कहानी दोहराता हूं. वो कहानी थी, एक गांव में एक आश्रम था, उस आश्रम के जो गुरुजी जो थे ना, उनके दो शिष्य थे, और उन दो शिष्य, मैं इस कहानी का एप्लीकेशन बताऊंगा. आप लोगों ने कहानी तो सुनी होगी, लेकिन नेचुरली बाबा ने वो कैसे टच कराकर, वो ड्रामा में वो था और कैसे सिचुएशन संभल गया, मैं बता रहा हूं. तो वो गांव में वो जो गुरुजी थे ना, उनके आश्रम में उनके दो शिष्य थे, और उन दो शिष्यों का नाम था रामा और दामा. क्या नाम था, थोड़ा जोर से बोलिए. हाँ, ये जो रामा जो था ना, वॉज वेरी वेरी पॉजिटिव, एनर्जेटिक थे, फुल ऑफ वैल्यूज. दामा जो थे ना, हमेशा नाराज होते रहते थे. जब सुबह सुबह संदेश जब गुरुजी का पहुंचा, तो रामा वॉज वेरी एक्साइटेड, आज गुरुजी मुझे क्या सिखाएंगे. और दामा हमेशा की तरह सुबह सुबह बुला लिया, अभी क्या बोलने वाले हैं. तो रामा और दामा गुरुजी के सामने पहुंचे, तो गुरुजी ने क्या कहा कि आज मैं आपको कुछ थियोरी नहीं सिखाऊंगा, बट आई वॉन्ट यू टू डू समथिंग प्रैक्टिकल. तो गुरुजी ने क्या कहा, रामा और दामा को एक टोकरी दिया, उसमें रंग बिरंगे फूल थे, और गुरुजी ने कहा आज आपकी सेवा यह है कि आपको गांव में जाना है, गांव वालों से मिलना है, और ये रंग बिरंगे फूल गांव वालों को देना है. बस एक छोटा सा कंडीशन का आप ध्यान रखेंगे कि आप ये फूल उसी को दे सकते हो जिनके चेहरे में मुस्कुराहट हो. क्या था कंडीशन? हाँ, रामा और दामा गए, एक घंटे के बाद रामा वापस आ गया, अरे गुरुजी कितनी वंडरफुल सेवा, हमने खूब एंजॉय किया. तो गुरुजी ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन बट वेयर इज योर फ्रेंड दामा? तो रामा ने कहा गुरुजी उनके लिए इंतजार करना पड़ेगा. ठीक है भाई, इंतजार करते हैं. दोपहर हो गई, दामा नहीं पहुंचा, सूर्यास्त हो गया तो भी दामा का पता नहीं. रात को दामा आए, टायर्ड, फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री, एजिटेटेड, इतने गुस्से में, उनके हाथ में टोकरी भी था, रंग बिरंगे फूल भी थे. गुरुजी के सामने टोकरी पटक दिया, क्या गुरुजी कितना कठिन काम देते हो, अरे आज के जमाने में किसी के चेहरे में मुस्कुराहट हो सकता क्या, सच अ टफ चैलेंजिंग टास्क. तो गुरुजी ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन रामा ने अपना काम कैसे किया? तो रामा को बोला, रामा कम हियर, आप अपना अनुभव शेयर करिए कि आपने अपना ये काम कितना सहज रीति से कैसे किया. तो रामा ने क्या अनुभव सुनाया बताइए, जिन्होंने कहानी सुनी है. कितनों ने कहानी सुनी है वो हाथ उठाएं. अच्छा, कितनों ने कहानी नहीं सुनी है वो हाथ उठाएं. अच्छा, कितनों ने कहानी सुनी है हाथ उठाएं. हाँ, बहन जी इधर आइए, इधर आइए, सामने बैठने का फायदा ये होता है. आइए आइए, माइक में बताइए इसका समरी क्या है. वेरी गुड, वैसे भी तो आप तो टीचर बहन हो ना, तो आपका तो कम्युनिकेशन आप बोलते रहते हो, राइट? बोलिए बोलिए बोलिए, है ना? तो आपने एंड में वो कहानी आपने सुनी है, तो रामा ने गुरुजी से क्या कहा, कैसे वो काम कर पाया? माइक में बोलिए।
रामा ने कहा कि जब मैं किसी से भी मिला तो मैंने पहले मैं मुस्कुराया, तो जैसे मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा तो सामने वाला भी मुस्कुराकर उसने फूल वो लिया।
अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड, मुबारक हो। यस, दैट इज द स्टोरी। तो रामा ने अपना अनुभव सुनाया कि जब वो गांव में जाते थे ना, तो सबसे पहले वो क्या करते थे, सबसे पहले वो बहुत खुशी में रहते थे, बहुत मुस्कुराते हुए गांव वालों को बुलाते थे, आइए आइए गुरुजी ने आपके लिए रंग बिरंगे फूल दिए हैं। गांव वाले रामा का खिला हुआ चेहरा देखते थे, उनकी मधुर वाणी सुनते थे, तो गांव वालों के चेहरे में मुस्कुराहट आ जाता था। और रामा क्या करता था, फटाफट सबके हाथ में फूल पकड़ा देता था। और दामा के साथ क्या हुआ, अगर किसी के चेहरे में थोड़ी बहुत मुस्कुराहट होगी भी तो दामा का चेहरा देखकर मुरझा जाता था। अच्छा बताइए, हमें रामा बनना है या दामा बनना है? थोड़ा जोर से बोलिए। मैंने भी ऑडियंस से यही पूछा तो सभी ने कहा हमें रामा बनना है। अब मेरा लक्ष्य पता क्या था, मेरा लक्ष्य था एक बच्ची सबके सामने रोते हुए गई है, वाह जिंदगी वाह, अगर मैंने बच्चे के मुख से निकलवा दिया ना तो मेरा लेक्चर खत्म, क्योंकि प्रैक्टिकल एक सिचुएशन आई है। उस लक्ष्य को रखकर मैंने कहानी सुनाई, अब मुझे उस बच्ची तक पहुंचना था। अब मैं कैसे पहुंचा मैं बताता हूं, राइट? तो मैंने पूछा, अच्छा इस सभा में कितने जो बच्चे हैं वो जरा हाथ उठाएं, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, बताइए, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नहीं, सारे हाथ उठा रहे हैं, हम भी स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां जरा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, हाँ ये छोटी बच्ची खड़े हो जाइए, ये देखो ये सारे बच्चे हैं ना, वेरी गुड। तो वह सभा में बहुत सारे बच्चे खड़े हुए, बैठ जाइए राइट। तो मैंने बच्चों से पूछा, अच्छा बच्चों बताइए, अभी मैं आपके लिए प्रैक्टिकल प्रश्न पूछता हूं। प्रैक्टिकल प्रश्न ये है कि हर दिन जब आपके माता पिता और आपके शिक्षक आपको पढ़ने के लिए कहते हैं, तब आपका चेहरा कैसा होता है? सारे बच्चों को देखने लगे, तो कुछ बच्चों ने कहा सर रामा जैसे होता है। मैंने कहा वेरी गुड। फिर मैंने कहा अच्छा इस सभा में जितनी भी बहने बैठे वो हाथ उठाओ, तो सभी माताएं बहने हाथ उठाए। मैंने कहा आपके लिए प्रश्न ये है कि हर दिन जब आप घर में जाते हो, जब भोजन बनाते हो, तब आपका चेहरा कैसा होता है, रामा जैसे या दामा जैसे? तो सबने रामा कहा। फिर मैंने कहा इस सभा में जितने भी भाई लोग बैठे वो हाथ उठाए, तो सबने हाथ उठाया। तो मैंने कहा आपके लिए प्रश्न ये है कि हर दिन जब आप भोजन करते हो तब आपका चेहरा कैसा होता है, रामा या दामा? तो सबने, अब इस प्रश्न से मैंने हमने क्या किया, सारे ऑडियंस के साथ कनेक्टिविटी हो गई, छोटे बच्चे के साथ भी मैंने कनेक्ट किया, माताओं बहनों को भी मैंने वो उनको आई एक्नॉलेज देयर प्रेजेंस कि आप बैठे हैं, और भाइयों को भी मैंने एक्नॉलेज किया कि मैं आपका सम्मान करता हूं कि आप मेरे इस सभा में आए हैं, एक्नॉलेजमेंट। फिर मैंने उनको एक अनुभव सुनाया, मुंबई में मैं एक प्रोग्राम कर रहा था, जब मैंने भाइयों से पूछा कि भाई जब आप भोजन करते हो तो आपका चेहरा कैसा होता है, तो मुंबई में एक भाई खड़े होकर कहते स्वामी भाई वो भोजन के टेस्ट पर डिपेंड करता है, हमारे हाथ में नहीं है रामा या दामा। सो यू मेक द सिचुएशन वेरी लाइट। फिर मैंने कहा अच्छा ओके, जब ये ऐसा प्रश्न पूछते पूछते अब मैं धीरे से सिचुएशन पर गया और वो भाई को देखा, जिस भाई ने सारा मोबाइल वाह किया। मैंने उसको कहा तू इधर आ जा, तो धीरे धीरे आया। मैंने कहा आओ ना, तो छोटा सा कुमार भाई, वेरी क्यूट फेलो, मैं इधर आया। मैंने कहा खड़े हो जाए इधर। मैंने कहा अब बताइए, कभी भी मोबाइल बीच में से गीत बजता है तब आपका चेहरा कैसा होगा, रामा या दामा? तो उसने धीरे से दीदी को देखा, तो दीदी का दृष्टि अभी सचमुच प्यार भरा होने लगा, रहम भाव, क्योंकि सब लोग हंसने लगे, दीदी का तनाव कम हो गया। तो दीदी को देखा, फिर बाप रे, लेकिन दीदी के भी चेहरे में मुस्कुराहट आ गई तब तक। तो मैंने कहा बताइए, तो उसने कहा स्वामी भाई रामा जैसे होगा, तो सबने बहुत जोर से तालियां बजाई और उसके चेहरे में सचमुच मुस्कुराहट आई, क्योंकि वो ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। उसको ये टेक्नोलॉजी नहीं मालूम थी कि जब भी आप मोबाइल में करते हो तो उसको यू शुड पुट इट इन अ फ्लाइट मोड, अगर आपने फ्लाइट मोड में कर फिर आपने वो स्वागत गीत गाया तो कभी नहीं बजेगा, लेकिन अगर आपने उसको फ्लाइट मोड नहीं किया तो ऐसे बीच में प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो उसको वो टेक्नोलॉजी नहीं पता थी, और पहली बार अनुभव हुआ, अगली बार से वो करेगा कि ऐसे करते वक्त मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैंने उस बच्ची को देखा तो बच्ची थोड़ा कंफर्टेबल होने लगी। मैंने कहा इस भाई को कहा जाओ और उससे ये प्रश्न पूछो, यू गो, तो ये भाई उस बहन की छोटी कन्या के पास गया, तो मैंने यहां से प्रश्न पूछा, अच्छा बच्ची को खड़ा करो, तो खड़ी हुई और भाई भी खड़ा था, तो मैंने उस बच्ची को, अच्छा बताओ जब कोई गीत बजता अचानक गीत बंद हो जाता है तो बच्ची बताओ आपका चेहरा कैसा होना चाहिए, रामा या दामा? तो कुछ जवाब नहीं दिया, बिल्कुल जवाब नहीं दिया। तो भाई जी ने जो कहा ना, मैंने वो टेक्नोलॉजी यूज किया, धीरे से गया लेकिन मेरा माइक वहां तक पहुंच नहीं रहा था, तो मैंने उस भाई को कहा बच्ची को लेकर आओ। तो उस बच्ची को उसने स्टेज पर लेकर आए, उसकी मां आ रही थी, मैंने कहा नहीं मां बैठे रहो, बच्ची को लेकर आओ। तो बच्ची को लेकर आए तो मैंने कहा देखो बच्ची आप कितना अच्छा डांस कर रहे हो, तो 2 मिनट के गीत में हमको सबको समझ में आया। और पता आजकल ये बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते हैं, यू नो इंडियन आइडल होता है या स्टार, ऐसे बहुत सारे बच्चों का प्रोग्राम टीवी में देखते रहते हैं, राइट? तो मैंने कहा आपको ऐसे कुछ टीवी प्रोग्राम के बारे में पता है? तो उसने फटाफट 2-3 बताया। मैंने कहा देखो जब भविष्य में जब आप ये प्रोग्राम कर रहे हो और अचानक कुछ हो गया तो जजेस आपको उस समय उस भाव में देखना चाहते हैं कि इतनी प्रॉब्लम पर भी आप कैसे बिहेव करते हो, ये हो सकता है। और आज आप ईश्वरीय मंच में आपको वो प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो धीरे धीरे शी बिकेम वेरी हल्का। फिर मैंने उनको पूछा अच्छा बताइए अब अगर बीच में मोबाइल बंद हो जाए तो आपका चेहरा कैसे होगा? तो उसने बहुत मुस्कुराते हुए कहा स्वामी भाई रामा जैसे होगा। तो मैंने कहा भाई को कब लगाओ। तो ही वेंट देयर। मैंने कहा अभी देखो ऑडियंस से भी मैंने पूछा, बाई चांस कुछ भी हो सकता है, लाइट चली जा सकती है, मोबाइल फिर से बच सकता है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आपका व्यवहार कैसे होगा? तो सबने कहा हमारे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस होंगे, हम किसी पर हंसी नहीं उड़ाएंगे, दे देमसेल्फ्स टोल्ड। और फिर बहुत अच्छे से ये गीत बजा, उसने बहुत अच्छे से डांस किया, फिर मैंने उसका फूलों के द्वारा स्वागत किया एंड द सिचुएशन वॉज बैक टू नॉर्मल सी। तो जो पूरा जो टॉपिक जो वाह जिंदगी वाह का था, तो एक परीक्षा काफी बार हम फैकल्टी मेंबर्स को आती है जब हम स्टेज पर जाते हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं, हमारा स्क्रिप्ट क्या है, महत्व नहीं है, उस सिचुएशन पर हम किस तरह से बिहेव करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जहां पर ईश्वर हमें कम्युनिकेट कैसे करना सिखाता है, तो मैं आपको स्टार्टिंग की एक बात बताता हूं। जब परमात्मा इस धरती पर उतरे, आप इस प्रश्न पर जरूर गौर करना क्योंकि हमारा टॉपिक कम्युनिकेशन पर है, और हम सभी इतने भाग्यशाली बाबा के बच्चे हैं जो संगम युग पर परमात्मा डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है, हम उसको सुन रहे हैं। हु कुड बी अ बेटर टीचर देन परमात्मा हु कैन टीच अस कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट ना? अब देखिए परमात्मा जब ये धरती पर उतरा और ब्रह्मा बाबा के तन को लिया, तो सबसे पहले महावाक्य शिव बाबा के कौन से थे? यस, उनका वो 3 बहुत फेमस जो बातें उन्होंने बताई, निजानंद स्वरूपम शिवो अहम शिवो अहम, राइट, ज्ञान स्वरूपम शिवो अहम शिवो अहम, तीसरा क्या था, प्रकाश स्वरूपम शिवो अहम शिवो अहम। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये तीनों जो स्टेटमेंट जो शिव बाबा ने सबसे पहली बार ब्रह्मा तन के आधार को लेकर कहा, ये कौन सी भाषा में है? विच इज दिस भाषा? संस्कृत। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ईश्वर ने सबसे पहला कम्युनिकेशन संस्कृत से क्यों स्टार्ट किया? क्यों? अच्छा शिव बाबा को आदत पड़ गई थी, शिव बाबा को, सॉरी, हाँ, अरे वाह बहन जी, वेरी इंटेलिजेंट सिस्टर, करेक्ट। अच्छा बहन जी ने सही जवाब दिया लेकिन शायद आपको सही जवाब वहां सुना नहीं हो गया, तो आप भारत बताइए आपका क्या लगता है, जो भी बता रहे थे बताइए, कहीं से मुझे आवाज सुनाई दे रही थी, खड़े होकर बताइए ताकि मैं आपको देख भी सकूं। यस, अच्छा बहन जी वहां पर, हाँ, क्यों उन्होंने संस्कृत में बोला, क्या बोल रहे, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज इज संस्कृत। अच्छा बहन जी अगर आप कहते हो हर भाषा की लैंग्वेज अगर संस्कृत है तो मुरली भी संस्कृत में सुनाते थे ना, वहां मुरली पर जैसे है तो परमात्मा ने अपना डायलॉग चेंज किया, फिर हिंदी और सिंधी पर आ गए। इफ इट इज अ मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज संस्कृत, तो मुरली भी संस्कृत सुनाते थे। अभी 31 को आने वाले हैं, बाबा आए और संस्कृत में चालू हो गए, हो सकता था। यस भाई जी बताइए, नहीं साक्षात्कार और इस भाषा में क्या कनेक्शन है मुझे समझ में नहीं आया, साक्षात्कार ठीक है लेकिन उन्होंने संस्कृत क्यों बोला पहला स्टेटमेंट? यस यस ब्रदर, हाँ अच्छा वो कहते हैं ईश्वर की वाणी संस्कृत में होती है, वेरी गुड, लेट मी सी हु गेट्स द राइट आंसर, बहन जी इज वेरी क्लोज टू द राइट आंसर, बताइए संस्कृत क्यों बोला, डिविनिटी है संस्कृत भाषा में, आप उसको हिंदी बोलिए, हिंदी का अर्थ क्या होता है? आप इंग्लिश बोल रहे हैं ना, तो उसका हिंदी अर्थ समझाइए मुझे। ब्रीविटी वो करे, नहीं हिंदी की बात नहीं कर रहे अभी, हम संस्कृत की बात कर रहे हैं। संस्कृत में क्यों बोला आप बताइए। हाँ हाँ हाँ, क्या बोल रहे? नहीं आप, यू आर राइट ब्रदर, आप बोलिए क्या बोल रहे थे आप। ये आप सही सही बता रहे, बताइए। ये भाई जी जो अभी बता रहे हैं ना, वो सही ही बता रहे हैं, बोलिए। एक मिनट एक मिनट। हाँ, संस्कृत का ज्यादा प्रभाव पड़ता था। हाँ जी, ब्राह्मणों की भाषा है। अभी ब्राह्मणों की भाषा चेंज हो गया क्या? अभी हिंदी और सिंधी हो गया। वाह बहन जी वाह, अभी हम सब ब्राह्मण है। 1936 का ब्राह्मण अलग, अभी के ब्राह्मण अलग, ऐसा थोड़ी ना। ब्राह्मणों की भाषा संस्कृत है। अच्छा हाँ, नाउ किसने ये सही जवाब दिया? थोड़ा जोर से बोलिए, जोर से तालियां बजाइए। दैट इज द राइट आंसर, करेक्ट। उन्होंने जो बताया एकदम सही बताया। ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरुएं की थी, बहुत शास्त्र पढ़े थे, गीता का इतना अध्ययन करते थे, तो उसको सारे जो उन्हें पढ़े थे उन्होंने संस्कृत में पढ़ा था। इसलिए जब शिव बाबा आए तो सबसे पहले ना उन्होंने उस भाषा को यूज किया ताकि ब्रह्मा बाबा उस ईश्वर के साथ, दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन। इससे अच्छा रीजन और भी हो सकता है। आप सोचना, परमात्मा 31st को आ रहे हैं, हम पूछ भी सकते हैं बाबा आपने संस्कृत क्यों बोला। अरे हमारा तो डायरेक्ट हॉटलाइन कनेक्शन है ना बाबा के साथ, क्यों नहीं पूछ सकते, राइट? लेकिन ब्रह्मा बाबा ने जो पूरे शास्त्र पढ़े थे ना, तो उनके बुद्धि में ये बैठा था कि ईश्वर की जो गीता का जो उपदेश हुआ वो संस्कृत में हुआ, राइट? अच्छा, फिर वो बस 3 स्टेटमेंट के बाद बाबा जो बात करने लगे वो हिंदी और सिंधी मिक्स होने लगी। हिंदी और सिंधी क्यों बोले अब बताइए? सबको समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो हमको सबको पता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इंपॉर्टेंट है कि वो रथ हिंदी और संधि बोल सकता है, राइट ना? दैट इज इंपॉर्टेंट। परमात्मा ने जिस रथ को यूज किया वो रथ जो है वो हिंदी और सिंधी बोलता है, इसलिए परमात्मा ने वो वाणी को यूज किया। तो इसमें दो बातें, तो कम्युनिकेशन में ये बातें जानना बहुत जरूरत है कि जब हम ऑडियंस के पास जाते हैं तो ऑडियंस के वो नब्स को समझना जरूरी है कि ये ऑडियंस जो है ये कौन सी भाषा समझ में आती है इसको, ये टारगेट ऑडियंस कौन है हमारे सामने, बच्चे हैं, बड़े हैं, मिक्स ऑडियंस है, उस आधार पर आपको स्टार्ट करना चाहिए। और शिव बाबा की जो टेक्नोलॉजी, देखो कितनी वंडरफुल टेक्नोलॉजी है। उन्होंने क्या किया, ही स्टार्टेड फ्रॉम द नोन टू द अननोन। जो ब्रह्मा बाबा जानते थे संस्कृत से शुरू किया, और वहां से करते करते शिव बाबा को, जो ब्रह्मा बाबा को लेकर जाना था विष्णु चतुर्भुज तत्त्वम तक, वो पूरी विधि उन्होंने हिंदी और सिंधी में बताई। यस और नो? यस। इसे एज अ फैकल्टी जब आप किसी भी ऑडियंस के पास जाते हो तो सबसे पहले वो ऑडियंस का बैकग्राउंड जानना जरूरी है। मैं आपको अगले 45 मिनट, 7 बजे के पहले मैं ये लेक्चर स्टॉप करूंगा, लेकिन मेरा ये इंपॉर्टेंट बात है कि मैं आप ऑडियंस को मैं समझूं। तो मैं ये जानना चाहता हूं, ये जो पूरी सभा में बैठे हैं, आप में से कितने भाई बहन हैं जो हिंदी अच्छी तरह समझते हैं, वो जरा हाथ उठाएं। गुड। आप में से कितने भाई बहन हैं जो सिर्फ इंग्लिश एंड ओनली इंग्लिश यू कैन अंडरस्टैंड, प्लीज रेज अप योर हैंड। यू कैन अंडरस्टैंड ओनली इंग्लिश, ओनली एंड ओनली इंग्लिश। वी हैव गॉट वन ब्रदर। नो। अच्छा अच्छा, ऐसे कितने भाई बहन हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों समझते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड हिंदी बोथ? वेरी गुड वेरी गुड। ഈ ഓഡിയൻസിൽ എത്ര പേരുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം മാത്രം മനസ്സിലാവുന്ന? അവരൊന്ന് കൈയെടുത്താട്ടെ. സ്വാമി ക്യാ ബോലാ? മെനെ യേ ബോലാ കി സഭാ മേ സേ കിത്നെ ഹേ ജോ മലയാളം സമജ്തേ വോ ജറാ ഹാത്ത് ഉഠായേ. വാവ്, അഗർ മുജേ ഹാ ഏക് ബെഹൻ ജി ഹേ, വെരി ഗുഡ് ബെഹൻ ജി, നിങ്ങളുടെ വളരെ സ്വാഗതം ഹേ, വെരി ഗുഡ്. എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും വരണം ഹേ. അവ ഹമാരെ ദിൽ സേ ദിൽ കി ബാത്ത് ഹോ റഹി ഹേ. അവ ബെഹൻ ജി സേ ബാത്ത് ഹോഗി തോ മൈ മലയാളം മേ ബോലുംഗാ നാ. യെസ്, ദാറ്റ്സ് ദ ലാംഗ്വേജ്. അച്ഛാ, थोड़ा और ऑडियंस कम समझते हैं। इस सभा में से कितने हैं जो है ना समर्पित टीचर्स बहने हैं, वो जरा हाथ उठाए। वेरी गुड। अच्छा, इतने पूरे हाथ उठाए, वेरी गुड। इनके लिए जरा जोर से तालियां बजाइए। तालियां क्यों बजाई? हमने बोला कितनी अच्छी ऑडियंस है। दो कारण है, टीचर्स बहनों की अच्छी दृष्टि मिलना बहुत जरूरी है, तभी आप जीवन में आगे बढ़ोगे। और दूसरी बात यह है कि इसलिए भी तालियां बजवाई क्योंकि देखो, समर्पित टीचर्स बहने अगर ये वैल्यू एजुकेशन कोर्स करते हैं तो जो बाबा मुरली में जो श्रीमत देता है ना, बच्चे पढ़ना है और पढ़ाना है। तो जिस सेंटर पे मैंने देखा है टीचर बहने इसका इंटरेस्ट लेते हैं ना, तो भाई बहने अपने आप ये कोर्स करते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। तो नेचुरली जो भी टीचर्स बहने यहां पर आए हैं, यू आर वर्थ अप्रिशिएटिंग। अच्छा अच्छा, इस सभा में कितने हैं जो बीके स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स ऑफ बाबा, वो जरा हाथ उठाएं। अच्छा, मेजॉरिटी। इस सभा में से कितने भाई बहने हैं जो इस वैल्यू एजुकेशन के कारण ब्रह्मा कुमारी इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के संपर्क में आए, वो जरा हाथ उठाए, वो जरा खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। कितने हैं? नहीं, डोंट वरी, मैं आपको किसी को स्टेज पर बुलाने वाला नहीं हूं, है नहीं तो कोई खड़े नहीं होगा। अच्छा, इतनी नहीं बहने, आपके तो पास बैच है ना, तो आप अच्छा बाद में बीके बन गया। ओके ओके, ठीक है, इतने भाई बहने हैं, वेरी गुड वेरी गुड, इनके लिए भी जरा जोर से तालियां बजाइए। अच्छा अच्छा, इस सभा में ऐसे कितने भाई बहने हैं जो लौकिक में टीचर्स हैं, वो जरा हाथ उठाए, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, शिक्षक। हाँ, मैं भी हाथ उठाता हूं, मैं भी लौकिक में शिक्षक हूं, वेरी गुड राइट। अच्छा, इस सभा में ऐसे कितने भाई बहने हैं जो टीचिंग के अलावा कोई ना कोई प्रोफेशन में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं या कहीं पर जाते हैं, बैंक्स में हैं, जो प्रोफेशन में है, वो जरा हाथ उठाए। भाई बहने दोनों, काफी भाई भी हैं, कुछ बहने भी। अच्छा, इस सभा में ऐसे कितने भाई बहने हैं, विशेष बहने होंगे, जो घर गृहस्थ को संभालते हैं, है ना, वो सबसे बड़ा प्रोफेशन है, सिर्फ घर में पूरे परिवार को संभालते हैं, गुड। हैं जी, नहीं नहीं, बहने जो है नहीं, वो तो डबल रोल करते हैं ना, वो ऑफिस भी संभालते हैं, घर को भी संभालते हैं, लेकिन आप लोग पूरे डेडिकेटेड है ना अपने परिवार को संभालने वाले। ओके अच्छा, इस सभा में ऐसे कितने हैं जिन्होंने पहले स्टेज पर आकर कोई ना कोई सेवा की है, भाषण दिया है, वो जरा हाथ उठाए। अच्छा, कभी ना कभी, भले वोट ऑफ थैंक्स हो, चाहे ईश्वरी विश्वविद्यालय का परिचय, कहीं पर भी आपके इस जीवन काल में, पिछले जन्म की बात नहीं पूछ रहा हूं, इस जीवन में कभी ना कभी स्टेज पर आकर माइक पकड़ा है, वो जरा हाथ उठाए। अच्छा, गुड गुड। इस सभा में से कितने हैं जिन्होंने आज तक कभी स्टेज पर आकर माइक नहीं पकड़ा है, वो जरा हाथ उठाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। नहीं, कोई बात नहीं, अभी मैं आपको स्टेज पर बुलाने वाला नहीं हूं, आप डरिए नहीं, ये स्वामी भाई का कोई भरोसा नहीं है, है? खड़े हो जाएं जरा, जो आज तक कभी स्टेज पर आकर माइक नहीं पकड़े, वो जरा खड़े हो जाएं। अच्छा, काफी हैं, इतने सारे हैं, गुड गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बैठ जाइए। करीब मेरे ख्याल से 15-20 भाई बहने। ओके अच्छा, ये जो अब जो मैं आपको इनपुट दे रहा हूं, ये दोनों ग्रुप को मदद करेगा। पहला ग्रुप जिन्होंने आज तक कभी स्टेज पर नहीं आए, तो उसको मैं थोड़ा सा उनके लिए खास टारगेट ऑडियंस को रखकर कहता हूं, और जिन्होंने काफी आकर सेवाएं भी की है, तो उनको भी थोड़ा मदद जरूर मिल सकता है। अच्छा, अब मैं ये जो पूरा जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं तीन स्टेजेस पे इसको कवर करूंगा। सबसे पहली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कहीं स्टेज पर जाते हो, तो स्टैंडर्ड रूल तो है आपका योग बहुत अच्छा होना चाहिए, वो तो वी ऑल नो, लेकिन जब आप स्टेज पर जाते हो ना, तो उसके तीन रूल्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज लुकिंग गुड। ओके, लुकिंग गुड क्या होना चाहिए? लुकिंग गुड। तो आप देखिए कौन सी सभा में आप जा रहे हो उसके हिसाब से, और हम सभी भाई बहने जो हैं लुकिंग गुड होकर जाते हैं। दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप किसी पब्लिक स्पीकिंग कोर्स अगर आप प्रोफेशनल से सीखते हो, अगर आपने कभी भी देखा ना, इफ यू हैव, आप में से कितने भाई बहने जिन्होंने पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स अटेंड किया? अच्छा, स्वामी भाई हाथ उठाते हैं, मैंने प्रोफेशनल का कोर्स अटेंड किया, मैं जानना चाहता था कि उन लोग क्या सिखाते हैं। तो आप देखेंगे वो सबसे ज्यादा जो समय बिताते हैं कंटेंट पे तो बिताते हैं, लेकिन उससे ज्यादा आप कैसे दिखना चाहिए, टाई होना चाहिए, सूट होना चाहिए, बहुत ज्यादा वो एम्फेसिस उस पर देते हैं, राइट? लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इस विद्यालय में जो बाबा हमें कम्युनिकेशन का स्किल सिखाते हैं, वन इज लुकिंग गुड, नंबर टू इज फीलिंग गुड, राइट ना? जब आप ऑडियंस में जाते हो, व्हाट इज योर फीलिंग? शिवानी बहन के लैंग्वेज में अगर हम बताएंगे तो व्हाट इज योर फ्लो ऑफ एनर्जी, तो वह बहुत पॉपुलर हो गया, उन्होंने उसको ब्रांड कर दिया। तो जब आप जाते हो तो आपकी फ्लो ऑफ एनर्जी कैसी है, राइट? मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। पहली बार जब मुझे ज्ञान सरोवर में विंग के कॉन्फ्रेंस में मुझे इन्विटेशन मिला, तो मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा योग बल बढ़ रहा है, बाबा ने मुझे स्टेज दिया है, आई फेल्ट वेरी गुड। और मुझे वो दिन बहुत अच्छी तरह से याद है जब मेरे हाथ में माइक मिला। वैसे मैं बाहर लेक्चर सब तो लेता था, शिक्षक भी था, तो बोलने का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन एक आध्यात्मिक मंच पर सबसे पहले खड़े होना और ऐसे नॉन टेक्निकल टॉपिक पर लेक्चर देना, ये मेरे लिए पहला अनुभव था, राइट? तो जब मैंने वो, मुझे याद आता है जब मैंने वो सेशन स्टार्ट किया तो मैंने ये सीखा था कि भाई आपका सबके साथ आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए, पूरे हॉल में आपका जो नजर घूमना चाहिए, ये सब मुझे पता था। तो मैंने क्या किया, मैंने स्टार्ट किया ना तो मैंने उसको फॉलो किया, सारे लोग को दृष्टि देता रहा, प्यार से भी देखता रहा, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा था, पहली बार मैं लेक्चर ले रहा हूं, राइट? क्या हुआ, 5-10 मिनट के बाद अचानक मैंने देखा एक भाई हाथ खड़ा कर रहे। मेरे मन में इमीडिएटली संकल्प आया, लेक्चर स्टार्ट किया, इसका प्रश्नोत्तर अभी से चालू हो गया। फिर मैंने क्या किया, अपना रूल को चेंज किया, यहां दृष्टि देता था यहां से सीधे जंप करके यहां दृष्टि, बीच में देखते ही नहीं था, और बीच बीच में मैं साइड से देखता था वो हाथ उठा रहे, कुछ बोलने की कोशिश कर रहे। मैंने कहा इसको छोड़ो, बाकी सबको दृष्टि दो, मैंने उनको बिल्कुल माइंड ही नहीं किया और मैं लेक्चर चालू कर दिया। कुछ समय के बाद मैं थोड़ा सा स्टेज को यूज कर रहा था, मैं घूमते घूमते देखा कि वो भाई ना धीरे से सामने आ रहे हैं, तो मेरा बीपी बढ़ने लगा, बाप रे यार क्या करने वाले। तो मैं भी उसको दृष्टि देने लगा, मेरा दृष्टि बहुत प्यार वाला दृष्टि था, सामने आ रहा है ये तो, पहली बार मैं लेक्चर ले रहा हूं, इसका क्वेश्चन आंसर अभी से चालू हो गया। तो मैं जैसे वो नजदीक आया ना, मैं वहां दृष्टि दिया, फिर यहां दृष्टि, इसको देखा ही नहीं, तो कुछ बताने की कोशिश कर रहा, मैंने माइंड ही नहीं किया। अब उस भाई ने क्या किया, धीरे से जब देख रहे कि स्वामी भाई उसको नजर नहीं मिला रहे, सामने था स्टेज में पर खड़ा था और वो भाई लोग उसको अलाउ भी नहीं कर रहे थे यहां जाने के लिए, तो उसने क्या किया, सामने एक चिटकी रख दिया, एक लिखकर कुछ लिखकर रख दिया और चले गए। जैसे चले गए मैंने बाबा को बहुत दिल से धन्यवाद दिया, बाबा मेरा योग लग रहा है, बच गया बच गया। अब मैं क्या किया, लेक्चर लेते लेते मुझे थोड़ा उत्सुकता हुई कि लिखा क्या, मैं धीरे से जाके नजदीक देखा, कोई प्रश्न है क्या, अगर प्रश्न का जवाब होगा तो मैं भाई को खड़ा होकर बता सकता हूं, भाई इस प्रश्न का जवाब ये। मैंने धीरे से देखा, पता उन्होंने क्या लिखा था, उस भाई ने लिखा था, स्वामी भाई कृपया आप ज्यादा हिंदी का प्रयोग करिए, आप बहुत ज्यादा इंग्लिश में बोल रहे हैं। जैसे मैंने वो देखा, इतनी अच्छी फीलिंग, मैंने इस दृष्टि छोड़ दिया, इस दृष्टि उस भाई को बस दृष्टि देता रहा, वाह भाई वाह, मैंने आपको गलत समझा, आप कितने अच्छे भाई हो। ये मेरा पहला दिन का अनुभव था ज्ञान सरोवर का। उस दिन से मैंने महसूस किया, मुझे टाइम लगा, मुझे वक्त लगा, लेकिन जब भी मैं किसी ऑडियंस में जाता था, आप देखेंगे आपका अनुभव होगा, कुछ लोग होंगे जो बहुत आपको ध्यान से सुनेंगे, कुछ लोग होंगे ये क्या मुझे सिखाने वाला है, अब सबकी अपनी अपनी भाई दृष्टि, जैसे वो देना चाहे वो दे सकते हैं, और कुछ लोग तो एकदम सामने बैठकर, ये सारे आपको मिलेंगे। और मुझे कभी कभी क्या होता था, मुझे 5 साल लगे ये परिवर्तन करने में। मैं क्या करता था, अगर कोई सो रहा होगा ना तो मेरा उस पूरा 1 घंटे का लक्ष्य था, चाहे कुछ भी करे इस भाई को मुझे जगाना है। मेरा लक्ष्य यह होता था, अगर कोई भाई मुझे घूर के देख रहा ना तो मेरा यह लक्ष्य होता था, चाहे कुछ भी हो जाए इसके चेहरे पे मैं इसका चेहरा जो दामा है ना इसको रामा बनाकर ही छोड़ूंगा। और इस 5 साल में मैं कभी कभी अपना वीडियोस से मुझे भाई लोग दिखाते हैं या यूट्यूब में कहते देखो ना, मैं देखता हूं मेरे स्टार्टिंग का वीडियो तो मैं कभी देखते ही नहीं हूं, और कभी कभी मैं अपने लेक्चर के हिसाब से बताता हूं जो पहला इतना वर्ष पहले रिकॉर्ड किया गया ना उसको पीएमटीवी में प्लीज नहीं दिखाओ, क्योंकि वो देखता हूं तो सचमुच आई फील सो बैड अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि उस सोने वाले को जगाने में, उस दामा को रामा बनाने में मेरा चेहरा दामा जैसे हो जाता है। ये मैंने बहुत क्लियरली अपनी वीडियो में देखा। 5 साल में मैंने एक परिवर्तन किया, मैं जब स्टेज पर जाता हूं कोई सो रहा है तो उसको सोने दो, किसी का चेहरा दामा है तो दामा होने दो, अब मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। और उसका कारण दामा होना मैं नहीं हूं, उसका कारण उसके वाह वाई फाई वाह हो सकती है ना, अब मुझे क्या पता, देयर कुड बी सो मेनी रीजंस। मैं क्या करता हूं, जो जैसा है उसको वैसा का वैसे एक्सेप्ट करो, और उन लोगों पर ज्यादा अटेंशन करो जो आपको बहुत स्नेह और प्यार से सुन रहे हैं। योर फोकस, योर पैराडाइम शिफ्ट शुड हैपन लाइक दैट। और जैसे ही मैं करने लगा ना तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग लगी। 5 साल के बाद अचानक एक दिन मेरे क्लास में एक व्यक्ति का मोबाइल रिंग हुआ, मुझे इतना गुस्सा आया, मेरा चेहरा दामा जैसे हो गया। फिर मैंने जब अपना वीडियो देखा, मैंने कहा नहीं, मोबाइल बजना शायद भूल गया होगा, लेकिन व्हाई आई शुड गेट डिस्टर्ब बाय जस्ट अ मोबाइल, एंड आई एम स्पीकिंग अबाउट लीडरशिप, आई एम स्पीकिंग अबाउट मैनेजिंग स्ट्रेस, और मेरे एक मोबाइल से मेरा परिवर्तन हो रहा है, सो एम आई द राइट पर्सन टू गिव अ लेक्चर। उस दिन से मेरे क्लास में किसी का भी मोबाइल रिंग होता ना, मैं कभी डिस्टर्ब होते ही नहीं, कभी नहीं डिस्टर्ब होता। मुझे याद आता है एक बार मैं सीनियर सिटीजन का प्रोग्राम कर रहा था, तो बीच बीच में किसी का मोबाइल बजने लगा, तो उसके जो ऑर्गेनाइजर थे ना मेरे पास, मैं लेक्चर ले रहा था तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मैं लेक्चर ले रहा था, किसी का मोबाइल बज रहा है, एंड सीनियर सिटीजन का प्रोग्राम था, तो ये भाई नजदीक आकर ऑर्गेनाइजर जो थे ना, उसने आकर मुझे इससे कहा, सर आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, और उसने चिटकी में लिख कर दिया कि प्लीज आस्क पीपल टू स्विच ऑफ देयर मोबाइल्स एंड एटलीस्ट पुट इट इन द वाइब्रेटरी मोड। तो मैंने वो चिटकी लेकर सबको बताया, मैंने कहा देखो ऑर्गेनाइजर की तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज पुट इट ऑन द वाइब्रेटरी मोड और एटलीस्ट ऑन स्विच ऑफ मोड, राइट। और फिर मैं लेक्चर लेने लगा। अब एक सीनियर सिटीजन सामने बैठा था, उसका बार बार मोबाइल बज रहा था और सारे लोग उसको बहुत प्यार से दृष्टि दे रहे थे, फिर बज रहा है, फिर थोड़ा फिर बज रहा। तो मैं लेक्चर लेता गया, मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुआ। जब पूरा लेक्चर खत्म हुआ तो मुझे वो दिन इतनी अच्छी तरह से याद है, ये सब हो गया, वोट ऑफ थैंक्स सब खत्म हो गया, जब जाने लगा ना तो ये भाई मेरे पास आए और उसने अपना हाथ मिलाया, कहा स्वामी भाई बहुत अच्छा, आई रियली अप्रिशिएटेड योर लेक्चर। फिर उन्होंने मुझसे कहा आई एम वेरी सॉरी, मेरा मोबाइल बीच बीच में बज रहा था तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। मैंने कहा दैट्स ओके, लेकिन क्या था ना ऑडियंस डिस्टर्ब भी हो रहे थे और उन्होंने भी मुझे कहा था, बट अदरवाइज पर्सनली आई गॉट नो प्रॉब्लम विथ यू। बोला नहीं स्वामी भाई पता है मेरी प्रॉब्लम क्या है? तो मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? तो बोला कि ये सीनियर सिटीजन ने मुझे कहा, सचमुच ये मेरे साथ हुआ, उसने कहा मेरा जो पोतरा है ना ग्रैंडसन, उसने अभी तक मुझे ये नहीं सिखाया कि इसको वाइब्रेटरी मोड में कैसे करते। अब मैं आज जाऊंगा ना तो मैं अपने पोतरे से पूछूंगा, प्लीज टीच मी हाउ टू पुट इट इन द वाइब्रेटरी मोड। इसलिए जो बाबा की, फिर उस समय मुझे महावाक्य याद आए, नाराज, जब हम राज को नहीं जानते हैं तब हम नाराज होते हैं। सो दैट डे आई वॉज वेरी हैप्पी विथ माई सेल्फ कि भाई मेरी दृष्टि उस व्यक्ति के प्रति बिल्कुल परिवर्तन हुआ ही नहीं। तो वन इज लुकिंग गुड, नंबर टू इज फीलिंग गुड, और तीसरा क्या है आप बताइए, प्लीज फिल अप द ब्लैंक्स। लुकिंग गुड, फीलिंग गुड, तीसरा बताइए क्या होना चाहिए, क्या है? कॉन्फिडेंस। हाँ, एम आई रियली गुड? फर्स्ट इज एम आई लुकिंग गुड, नंबर टू इज एम आई फीलिंग गुड, एंड नंबर थ्री इज एम आई रियली गुड। और सच्ची बात बताएं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमारे में वो कुछ वैल्यूज अगर नहीं भी आए हैं ना, तो इंग्लिश में एक बहुत सुंदर डायलॉग है, इफ यू वॉन्ट टू लर्न एनी सब्जेक्ट स्टार्ट टीचिंग इट। अगर आपको कोई विषय सीखना है ना तो उस विषय को पढ़ाना आरंभ करो। तो अगर आप देखेंगे सारा दिन अगर आप वैल्यूज के बारे में या हफ्ते में एक दिन वैल्यूज के बारे में पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे वो वैल्यूज आपके जीवन में आने लगेंगे। सारा दिन बोलते रहो खुश रहो खुश रहो, तो आप सचमुच खुश रहोगे। एम आई लुकिंग गुड, एम आई फीलिंग गुड, एम आई रियली गुड। अब जब ये बात समझ में आ गई, अब लेक्चर को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो उसके लिए जो नेक्स्ट फेज है, वन इज जब पूरा लेक्चर जो होता है ना जैसे एक फिल्म बनती है, वैसे उसका पूरा स्क्रिप्ट हमारे में आना चाहिए कि आप ये सेशन को कैसे स्टार्ट करोगे, पूरा उस पूरी कहानी को आप कैसे लेकर जाओगे और उस कहानी को आप एंड कैसे करोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सामने जाते हो तो हाउ डू यू बिगिन विथ योर क्लास, पूरा स्क्रिप्ट कैसे चलता है, आपकी कहानी कैसे मूव करती है, और आपका कहानी जो ना एक के साथ एक कनेक्शन होना चाहिए, और फिर आप उस सेशन को कैसे एंड करते हो, राइट। अब हम सभी बाबा के बच्चों को पता है एंडिंग कैसे करना है, राइट। एंडिंग शुड बी मोर लेस इन मेडिटेशन, ओके गुड। हमको यह भी पता है कि इस पूरे स्क्रिप्ट में हमें उनको क्या क्या नॉलेज देना है। बस स्क्रिप्ट जब बनाते हो इस बात का ध्यान रखना, यहां पे टारगेट ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको पता है अगर हमें कहीं पर भी जाना है तो वैल्यूज के बारे में बताना है, और इस वैल्यूज में तो सबसे ज्यादा अगर आप कोई बीके ऑडियंस बैठी है ना तो वो आपको सबसे पहले जज कैसे करेंगे बताएं। कोई क्लास खत्म होता है वो कहेंगे क्या स्वामी भाई कौन सा लेक्चर था, आपके लेक्चर में आत्मा परमात्मा तो था ही नहीं। और अगर आपके लेक्चर में आत्मा परमात्मा आ गया तो बीके भाई इज वेरी हैप्पी। और सच्ची बात बताएं परमात्मा भी इस धरती में यही कम्युनिकेट करने के लिए आया है, दैट इज ऑल्सो रियालिटी। सो दैट बीके ब्रदर इज ऑल्सो एब्सोल्युटली राइट। बट इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपको जो टॉपिक मिला है, जो ऑडियंस है, टॉपिक और ऑडियंस के साथ आप कैसे इस बात को आप इंटीग्रेट करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और काफी बार जब आप आजकल के यूथ के पास जाएंगे ना तो ये डिस्कनेक्टिविटी नजर आती है, बीके फैकल्टी के साथ यही इश्यू आता है, क्योंकि टॉपिक जो दिया है और जो हमको जो सिखाना है इनके बीच में जब ब्रिज नहीं होता है ना तो लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अगर आप पूछेंगे आर्ट ऑफ लीडरशिप में आत्मा परमात्मा का ज्ञान कैसे दें, बहुत सारी विधियां हो सकती है, राइट? अ लीडर शुड बी अ सोल कॉन्शियस। ये बीके ऑडियंस को समझ में आता है, लेकिन नॉन बीके ऑडियंस को कैसे समझ में आएगा, राइट? अब आप देखना, जो हमने बताया ना, सो कैसे हम लोग ने इंटीग्रेट किया, और इससे भी बहुत अच्छी विधि हो सकती है। दिस इज नॉट द फाइनल प्रूफ, तो मैं इसलिए वो लास्ट में आपको पीपीटी दिखाऊंगा और आपको मैं पूछूंगा कि आप मुझे बताइए कि इसको और कैसे इंप्रोवाइज कर सकते हैं, क्योंकि मेरा नेक्स्ट सेशन जो है, मैं यहां से कल से कितने जगह जा रहा हूं, तो बहुत जगह लीडरशिप के टॉपिक्स हो सकते हैं। तो अगर आर्ट ऑफ लीडरशिप दिया गया है, तो आप उसको किस तरह से अपने जो रियल नॉलेज है जिससे आत्मा लीडर बनती है, वो कैसे आप दे सकते हो? एंड रियल लीडर बनने के लिए द टेक्निक इज राजयोग का मेडिटेशन। तो हमको फाइनल पता है, लेकिन हम उसको किस तरह से इंटीग्रेट करें। तो एक होता स्टार्टिंग, दूसरा होता एंडिंग, और बीच का स्क्रिप्ट। और ये जो बीच का स्क्रिप्ट जो होता है ना, जिसको हम अपने बाबा की भाषा में कहते हैं, वो टचिंग होता है। इट्स एन इंट्यूटिव टच। जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यूटन, हमेशा आपने एग्जाम्पल सुना होगा, न्यूटन वॉज वर्किंग विथ प्लैनेटरी प्रॉब्लम्स, और हमको पता न्यूटन वॉज देयर इन अ गार्डन, प्रकृति को एंजॉय कर रहा था, और अचानक न्यूटन ने एक एप्पल को गिरते हुए देखा। अगर न्यूटन के जगह पे अगर और कोई होता तो क्या करता था? एप्पल खा लेता था। अब प्रश्न ये उठता है कि सिर्फ न्यूटन को फ्लैश क्यों मिला, वहां उस गार्डन में कितने सारे लोग थे? तो इसका दो कारण है। पहला कारण, न्यूटन जो था ना, उस प्लैनेटरी प्रॉब्लम पर हमेशा वो विचार सागर मंथन कर रहा था। तो आप जिस टॉपिक पर आपको लेना है, उसमें अगर आप दो तीन दिन से सोचते रहेंगे, बाबा को याद करते रहेंगे ना, तो ये बाबा की जिम्मेवारी है जो आपको टच करेगा, एंड यू विल गेट द गुड फीलिंग, राइट? तो स्टार्टिंग कैसा होना चाहिए, एंड कैसा होना चाहिए, आप स्क्रिप्ट को कैसे लेकर जाए, धीरे धीरे आप उस टॉपिक पर बार बार, और आज मैं आपको एक टॉपिक दूंगा एंड में, जिस टॉपिक पर मैं काम कर रहा हूं। और सच्ची बात बताऊं ना, मुझे उसका स्टार्टिंग समझ में आ रहा, ना एंडिंग समझ में आ रहा, स्क्रिप्ट तो बिल्कुल ही नजर नहीं आ रहा है। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप सभी विचार सागर मंथन कर सकते हो, और आपको कहीं ना कहीं इंट्यूटिव फ्लैश मिल सकता है, आप उसका एक सेशन बना सकते हो। हम लोग कहते हैं, हम लोग ने वैल्यू एजुकेशन पर एमएससी किए, एमबीए किए, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, लेकिन जब हम स्कूल में जाते हैं शायद हमको चांस नहीं मिलता है। लेकिन मैं एक ऐसा टॉपिक देता हूं, इस टॉपिक को लेकर अगर आप जाएंगे 100% हर प्रिंसिपल कहेगा। अगर प्रिंसिपल नहीं कहेगा तो पता वो क्या करेगा, अगर उसका मैनेजमेंट अलाउ नहीं करता है, तो प्रिंसिपल कहेगा आप ना हमारे दो बच्चों को ये सिखाओ। गेस करिए वो टॉपिक क्या हो सकता है? वैल्यूज। वैल्यूज अगर होता था तो हम लोग यहां बैठते ही नहीं थे, पांडेमणि भाई, हम लोग सब स्कूल में प्रोग्राम करते रहते थे। शरारतें, क्लोजर टू द आंसर, यस बहन जी, शरारत बच्चे बहुत करते। कहीं ना कहीं मैं इसका पहले का जो लेक्चर सुन रहा था बहन जी का, तो उसमें भी उन्होंने इस बात को जिक्र किया था, राइट? अब इसको हम लोग थोड़ा सा आगे वो टॉपिक में लेता हूं, और क्यों ये चैलेंजिंग टॉपिक है इनमें मैं जरूर बताता हूं। तो लुकिंग गुड, फीलिंग गुड, एम आई रियली गुड, स्टार्टिंग, एंड एंड द स्क्रिप्ट। बस एक लास्ट बात बताकर आई विल कम टू द प्रेजेंटेशन, क्योंकि आई हैव टू टेक केयर ऑफ 7 o'clock। एक अच्छे फैकल्टी की निशानी पता क्या है बताइए? एक अच्छे स्पीकर की निशानी क्या है बताइए? सारे अच्छे स्पीकर बैठे हैं, बोलिए ना, ऑडियंस से कनेक्टेड है। अच्छा, और नॉलेजेबल। हम सभी तो ज्ञानी, तो आत्माएं तो बैठे ही हैं। अच्छा बताइए, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। अच्छा बताइए, क्या बताया? खड़े हो जाइए, जोर से जरा इनके लिए तालियां बजाइए। वाह बहन जी वाह। उन्होंने कहा टाइम मैनेजमेंट करना। यस, मैं अपना अनुभव सुना, तो मैंने एक बार अपने स्टूडेंट से पूछा एक अच्छे शिक्षक की निशानी क्या है, ये सारा उत्तर दिया, लेकिन सबसे उत्तर जो बहन जी ने देना वो विद्यार्थी ने कहा, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा सर एक अच्छे शिक्षक की निशानी यह है कि भले क्लास आधा घंटा लेट स्टार्ट करो, लेकिन सर 10 मिनट पहले हमें छोड़ दीजिए सर। और ये बीके फैकल्टी को यह होना बहुत जरूरी है, राइट? ये बहुत जरूरी है। अब आप देख रहे हो, कभी आप लेक्चर में बैठे हो, यू आर वन ऑफ द स्पीकर, राइट? प्रोग्राम आधा घंटा लेट स्टार्ट हो रहा है, ऑडियंस सुबह 4 बजे से लेकर बैठी, और हम सुनाते जा रहे हैं, वी हैव नॉट कनेक्टेड विद ऑडियंस। भले आपको 50 मिनट दिया है, लेकिन आप उस पूरे माहौल को देखकर, 50 मिनट का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, आप उसको 10 मिनट में कंप्लीट कर दीजिए, इतनी दुआएं आपको मिलेगी, बाप रे, सच्ची बात है। और ऑडियंस को छोड़ो, आपको ऑर्गेनाइजर की इतनी दुआएं मिलेगी, हर बार वो आपको बुलाएंगे। नहीं, ये भाई ये बहन बहुत अच्छी है, ये बहुत एडजस्टेबल नेचर है, फ्लेक्सिबल है। हाँ, दुआएं तो मिलती मिलती है, ऑडियंस की तो दुआएं मिलती है, लेकिन ऑर्गेनाइजर आपको बार बार बुलाएंगे। मैं अपना अनुभव सुनाता हूं, ये मैंने अपने अनुभव से सीखा। मुझे याद आता है एक बार मुझे साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग के प्रोग्राम के लिए मुझे एक बार सेशन, एंड इट वॉज द फर्स्ट टाइम आई मेट अ वंडरफुल बाबा चाइल्ड, और उनका नाम है अशोक गाबा जी। अपने डिफेंस विंग को बहुत अच्छी तरह कोऑर्डिनेट करते हैं, ही इज अ स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड अशोक गाबा जी। तो मेरा जो सेशन था ना, उसके वो कंपेरर थे, आज से बहुत वर्ष पहले की बात है। तो और उस समय मेरा फर्स्ट सेशन वाज ऑन साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स विंग के प्लेटफॉर्म पर, तो मैं आधा घंटा पहले आ गया और पूरा ऑडियंस कोई नहीं आया था, तो मैं योगदान दे रहा था और अपना बायोडाटा तैयार रखा था अपना सारा। उस समय पीपीटी नहीं होते थे, तो मैंने अपना नोटपैड में लिखा हुआ था, उसको प्रिपेयर कर रहा था। तो कुछ समय के बाद मैंने देखा, और आधा घंटा लेट प्रोग्राम चल ही रहा था, वो मुझे समझ में आया है ना। तो फिर मैंने देखा अशोक गाबा जी जैसे आए, तो मैं उनके पास जाकर कहा, मैंने कहा भाई साहब ओम शांति, मेरा नाम स्वामीनाथन भाई है, क्योंकि ही डिड नॉट नो मी, आई नो दैट। तो उसने कहा अच्छा अच्छा आप ही कीनोट स्पीकर? बोला हाँ। बोला अच्छा अभी तो लेट हो गए हैं, अभी ऑडियंस भी नहीं आई है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा यस। तो उन्होंने धीरे से मुझे पूछा आपको पता है कितना समय बात करने का है आपको? तो मैंने फटाफट मोहन सिंघल भाई जी का लंबा चौड़ा लेटर दिखा दिया, भाई साहब इसमें लिखा 50 मिनट। तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार से दृष्टि दी, बोला आपको समझ में नहीं आता आधा घंटा हमारा प्रोग्राम लेट है? तो फिर मैंने भी उनको थोड़ा प्यार से दृष्टि दी, आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विथ हिम। कोई बात नहीं, मैं आके बैठ गया। आधा पौन घंटे के बाद ऑडियंस पहुंची, स्टार्ट हुआ गुलदस्ता सब होते होते, एक घंटा लेट, राइट। द कीनोट स्पीकर मैं था, एक बहन जी मेडिटेशन कराने वाले थे, एक चेयरपर्सन थे, ओनली 3 पीपल। तो जैसे ही मुझे लेक्चर माइक मिला ना, तो मैंने धीरे से भाई साहब से पूछा, भाई साहब अभी वी आर 1 आवर लेट, अब बताइए भाई साहब मैं कितना समय बोलूं? तो उन्होंने देखकर कहा, उनको लगा ये बीके संस्कार होंगे, 10 मिनट बोलेंगे तो आधा घंटा में रुक जाएगा। उन्होंने कहा 10 मिनट, मैक्सिमम 12 मिनट। मैंने कहा ठीक है। मैं स्टेज पर गया, सारा स्क्रिप्ट को चेंज किया, 10-12 मिनट में मैंने ओम शांति कर दिया और आके बैठ गया। हाँ, तालियां बजा सकते हैं, जोर से बजाइए भाई, अच्छे संस्कार है। उसके बाद पता क्या हुआ, उसके बाद जैसे ही सेशन खत्म हुआ ना, अशोक गाबा जी आए, बहुत प्यार से मेरे से गले मिलाई, बड़े भाई जी हैं, बहुत पुराने भाई हैं, बहुत प्यार से गले मिले। बोला स्वामी आई एम वेरी हैप्पी विथ यू, एक काम करना, जब भी मेरा डिफेंस विंग का प्रोग्राम होगा ना, आप मेरे साथ आना। और बिलीव मी, बहुत जगह मुझे बुलाते हैं, मैं पूरे ऊपर से नीचे सियाचिन से लेकर कन्याकुमारी ईस्ट सब जगह मैं गया भाई साहब के साथ, क्योंकि उन्होंने ये उस समय देखा कि ये भाई जी को श्रीमत मिली 12 मिनट, तो 12 मिनट में कंप्लीट करना चाहिए। दैट टाइम मैनेजमेंट वी शुड बी एबल टू, इतना फ्लेक्सिबल हम रहे, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने अपने जीवन से ये सीखा कि हम बहुत ज्ञान सुनाने के बाद वो बाबा का बच्चा बने, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि मैं खुद भी बाबा का बच्चा बना, कोई मेमोरी का क्लास सुनकर मैं नहीं आया, कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट का लेक्चर सुनकर मैं नहीं आया। मैं आज से 20 वर्ष पहले बाबा का बच्चा बना, मैं सुबह के मॉर्निंग वॉक पे चल रहा था, मॉर्निंग वॉक चलते चलते मैंने वो योग करते, भाई बहनों को योग करते हुए देखा, और शिव बाबा का लाइट चमक रहा था। ठाकुर कॉम्प्लेक्स बॉम्बे, 1996 की बात है, मार्च 25, 20 वर्ष हो रहे हैं। तो मैंने बाबा का वो लाइट देखा, इतनी खिंचावट हुई, और मैं एंट्री किया और मैं बाबा का बच्चा बन गया। कौन सा मेमोरी सुना मैंने, कौन सा स्ट्रेस मैनेजमेंट लेक्चर मैंने सुना? इसे हमको ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि हमारे लेक्चर से कोई बाबा का बच्चा बन जाता है तो ठीक है, लेकिन हम ये जो सारा कार्य कर रहे हैं ना, इट इज फॉर आवर ओन वेलबींग, सेवा कर रहे हैं वो हम अपने लिए कर रहे हैं। और जैसे कहीं पे भी प्रोग्राम करते हैं ना, उसके बाद वो न्यारा प्यारा आप हो जाइए, ये भी एक बहुत अच्छी विशेषता। बार बार फोन करके नहीं पूछे कितने लोग राजयोग शिविर करने के लिए आए, उसमें से कितने बाबा के बच्चे बने, नो नॉट रिक्वायर्ड। जैसे कहते हैं ना, वो एक बहुत अच्छा सुंदर हिंदी में डायलॉग है, नेकी कर दरिया में डाल, फिर न्यारे प्यारे। हाँ, कभी मिलेंगे तो ओम शांति जरूर करना, बट दैट इज नॉट माई कंसर्न एट ऑल। कुछ बातें समझने के बाद, नाउ आई विल टेक यू टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ द आर्ट ऑफ लीडरशिप। बाई चांस आपका कभी समय शूट होता है तो टेक द परमिशन ऑफ द ऑडियंस। आपको लगता है कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलनी है लेकिन नहीं बोल रहे हैं, तो कैसे करना है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। लेकिन उसके पहले एक लास्ट बात मैं बताता हूं बिफोर आई टेक यू टू दिस प्रेजेंटेशन ऑफ द आर्ट ऑफ लीडरशिप, ओके। लेकिन मैं आपको लास्ट एक बात बताकर आई टेक यू टू दिस वन। जैसे एक भाई ने बहुत अच्छी बात बताई कि एक फैकल्टी का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इट्स कनेक्टिविटी, है ना, कनेक्टिविटी, ये बहुत जरूरत है। अब कनेक्टिविटी के लिए ये भाषा बहुत जरूरी है। जैसे अगर मैं अपने कंप्यूटर से अगर मैं बात करूं ना, और कंप्यूटर को अगर मुझे अपना अच्छा दोस्त बनाना है, तो कंप्यूटर की भाषा कौन सी है? बाइनरी, मशीन लैंग्वेज, जीरोस और वंस, राइट? अगर मुझे आपसे कनेक्ट होना है तो मुझे पूछना पड़ेगा आपको कौन सी भाषा समझ में आती है। तो मेजोरिटी ने हिंदी कहा तो मैं हिंदी में ज्यादा बात करूंगा। इवे मलयालते संसाचे एंत संभव कुछ कहें अवे एणिकों पांडिपणी मैंने काूँ अवड़े पड़पड़ू। क्या कहा मैंने? क्या कहा मैंने? पांडिमणि भाई समझ में आया मुझे, बाकी कुछ समझ में नहीं आया। मैंने ये मलयालम में कहा कि अगर मैं मलयालम में बोलने लगूंगा ना तो कुछ समय आप अपना सहनशीलता वैल्यूज है सहनशीलता कुछ समय सहन करेंगे, फिर धीरे से उठकर पांडिमणि भाई को बोलेंगे किसको उठा के लेकर आया, और फिर वहां से टकटक करके निकल जाएंगे। ये मैंने मलयालम में कहा। भाषा बहुत जरूरत है, हमको पता है, कोई नई बात नहीं है। अब अगर हमें ऑडियंस से कनेक्ट होना है तो हिंदी, इंग्लिश, मलयालम जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट भाषा है वो है दिल और मन की भाषा। बताइए मन की भाषा कौन सी है? मन की भाषा प्यार, वो तो दिल की भाषा है ना। मन की भाषा, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द माइंड? बताइए, थॉट्स। अच्छा, मन की भाषा बहन जी शांति, टाइम मैनेजमेंट, बहुत अच्छा बहन जी, टाइम मैनेजमेंट बहन जी कहते हैं शांति मन की भाषा। अच्छा बताइए, अच्छा मन की भाषा एक्शन, ओहो अच्छा। हाँ भाई जी बताइए मन की भाषा, मुस्कुराहट मन की भाषा है। अच्छा आप बोलिए भाई जी जो खड़े हैं, एक मिनट इस भाई को मैं सुन लूं, आप खड़े रहिए। हाँ आपने क्या कहा? इच्छा शक्ति, वाह वाह वाह, वेरी गुड। मन की भाषा है चित्र, इमेजेस। इसलिए ब्रह्मा शिव बाबा ने जब ब्रह्मा बाबा को संस्कृत श्लोक बोलने के पहले क्या किया? साक्षात्कार कराया। हाँ जी भाई जी, अच्छा सिचुएशन के हिसाब से मन की भाषा चेंज होती है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे है। मन की भाषा बेसिकली चित्र, इट्स इमेजेस। अब एक लास्ट बात बताकर आई टेक यू टू द प्रेजेंटेशन इन 5 मिनट्स। 5 मिनट हम मेडिटेशन करेंगे और 7 बजे के आसपास हम ओम शांति कर देंगे, ठीक है? अब बार बार ऑडियंस को बोलते रहिए, मैं बंद कर रहा हूं, मैं बंद कर रहा हूं, और 7 बजे का 7:15 भी हो जाएगा ना, लोग माइंड नहीं करेंगे। टेक्नोलॉजी, आपको अब सिलेबस कवर करना है, अभी मैं कर रहा हूं, अभी करूं, बस 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, अभी मैं अंत कर रहा हूं। कभी कभी यू कैन यूज दिस टेक्निक। मन की भाषा चित्र है। अभी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपके सामने ऑडियंस होती है ना, वो जो ऑडियंस होती है जब आप बोलते हो, सो देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ पीपल इन द ऑडियंस। द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पीपल जिसको हम लोग VAK प्रिंसिपल कहते हैं, VAK। मैं जो केरला गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है टीचर्स को, मेरा जो टॉप 3 दिन मैं टीचर्स को लेता हूं, इंजीनियरिंग प्रोफेसर्स को जो सेशन लेता हूं, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि जब एक शिक्षक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स पढ़ाता है तो इसी अवेयर ऑफ VAK प्रिंसिपल। व्हाट इज VAK? वी इज विजुअल, राइट? विजुअल का अर्थ होता है कि आपके ऑडियंस में जब तक आपने उसको कुछ चीज दिखाया नहीं ना, वो सामने वाला व्यक्ति मन से कुछ समझ ही नहीं पाएगा। आप कितना भी अच्छा बोलो, कितनी भी शायरी बोल दो, कितनी भी कहानियां बोलो, लेकिन अगर आपके सामने एक ऑडियंस हुज अ विजुअल कैटेगरी, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, वो सो जाएगा, तो उसको कहते हैं विजुअल। सेकेंड कैटेगरी ऑफ पीपल इज ऑडियो। ऐसे भाई बहने होते हैं, आप अगर बोलोगे ना तो उनका मन उसका चित्र बना सकता है, इसको ऑडियो कहते हैं। थर्ड कैटेगरी ऑफ पीपल इज किनेस्थेटिक्स। जब तक उनको कुछ आप कराओगे नहीं, खड़े नहीं करोगे, सामने नहीं बुलाओगे ना, उनका मन चित्र नहीं बनाएगा। तो इट इज विजुअल, इट्स ऑडियो। तीसरा कहते हैं किनेस्थेटिक। किनेस्थेटिक मतलब जैसे भाई ने कहा ना, एक्शन करवाना चाहिए। आप अगर स्पीकर हो तो आपको थोड़ा सा चलना पड़ेगा, तो जब आप चलोगे ना तो जो किनेस्थेटिक कैटेगरी के लोग होते हैं ना, वो बहुत खुश होते हैं। लेकिन जो ऑडियो और वीडियो, तो अब आप पूछेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे सामने ऑडियंस जो है वो विजुअल है या ऑडियो है या किनेस्थेटिक्स है, तो आप क्या करोगे बताइए? क्या करेंगे, क्या करेंगे बहन जी? एग्जैक्टली बहन जी ने एकदम सही बात बताया। आपको क्योंकि पता नहीं है तो आपके प्रेजेंटेशन में तीनों का संगम होना चाहिए। आप विजुअल भी करिए, कुछ PPT दिखा दीजिए, कुछ वीडियो दिखा दीजिए, ऑडियो यूज करिए और थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड करिए। तो जब आप ये तीनों का संगम करते हो, जब आप तीनों का संगम करते हो, दैट इज द बेस्ट इंपैक्ट इन द ऑडियंस। आपको बहुत अच्छा लगता हो कि मैं बैठकर मैं सुनाते रहूं, ऑडियो सुनाते रहूं, ये आपको अच्छा लगता है, लेकिन आप स्टेज पर क्यों आए? आपको कुछ बात कम्युनिकेट करने का था ना। तो अगर आपको ऑडियो बहुत अच्छा लगता, आज तक आपने विजुअल पीपीटी यूज नहीं किया, आज तक आपको वीडियो, तो आप सीखिए उसको। कुछ किनेस्थेटिक वालों को आपको एक्शन ओरिएंटेड करना पड़ेगा धीरे धीरे, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि एक फैकल्टी बस ऑडियो करते हैं, मैं भी ऑडियो करूं, नहीं, उनको वो अच्छा लगता है। आपको अपने ऑडियंस के हिसाब से तीनों का संगम करना बहुत बहुत जरूरी है, विजुअल, ऑडियो एंड किनेस्थेटिक्स, इन तीनों का संगम करना जरूरत है। मैं कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके लिए मैं लेकर आता हूं। ओके, द आर्ट ऑफ लीडरशिप। तो ये मैंने जो स्टार्ट किया था, इट वॉज वेरी सिंपल। मैं बहुत जल्दी इसको मैं दिखाऊंगा कि सारा स्क्रिप्ट कैसे बना। मैंने एक कहानी के साथ स्टार्ट की थी, दिस इज ऑल अबाउट, क्योंकि वहां पर लीडरशिप पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ही इज एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने विश्व को अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर गए। कौन है ये व्यक्ति? एडिसन, सर थॉमस अल्वा एडिसन। तो इसकी मैंने कहानी सुनाई। हमेशा मैं बच्चे के एक स्वरूप से मैं स्टार्ट करता हूं, सारे लोगों से मैं करवाता हूं, मेरा स्टैंडर्ड है ये, राइट? इफ आई एम हैप्पी, आप लोग भी सभी मेरे साथ बोल सकते हैं, सभी बोलिए इफ आई एम हैप्पी। थोड़ा मुस्कुराकर बोलिए ना, चेहरा रामा जैसे होना चाहिए ना। आजू बाजू कोई सो गया होगा तो बुला लीजिए, तो आजू बाजू वाले उठ जाएंगे। ओके, आई कैन मेक द वर्ल्ड हैप्पी एंड अ बेटर प्लेस टू लिव, दिस इज माई वन ऑफ माई स्टैंडर्ड डायलॉग। आप कोई भी लेक्चर मेरा सुनो तो इससे क्या होता है, ऑडियंस की कनेक्टिविटी हो जाती है। तो किनेस्थेटिक वाले लोग जो होते हैं ना, जब वो बोलने लगते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको अच्छा लगता है। अच्छा, फिर इसके बाद देखिए, अब लीडरशिप जो है ना, तो मैंने उस ऑडियंस को कहा, आई विल टेल यू एन होलिस्टिक विजन ऑफ लीडरशिप, होलिस्टिक मॉडल ऑफ लीडरशिप। होलिस्टिक क्या है लोगों को नहीं पता, लीडरशिप क्या है मोरलेस। आपके ऑडियंस में बहुत सारे ऐसे लीडर्स बैठे होंगे, वो सीईओ होंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होंगे, तो वो तो अपने क्षेत्र में लीडर्स हैं ही ना। लेकिन आप क्या कह रहे हो, आई एम टेलिंग यू अ होलिस्टिक मॉडल ऑफ लीडरशिप। फिर मैं धीरे से बताता हूं, ये होलिस्टिक मॉडल मैंने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में सीखा है, दिस व्हाट आई लर्न्ड। मैं हार्वर्ड मॉडल मुझे नहीं पता, ऑक्सफोर्ड मॉडल ऑफ लीडरशिप मुझे नहीं पता, मुझे ये मॉडल पता है। 20 वर्षों से इस मॉडल को मैंने देखा है, महसूस किया है, तो वो मैं आपको प्यार से बताऊंगा, राइट? और बाबा कभी कभी मुरली में कहते हैं ना, बच्चे आप सेल्समैन हो, यूज करते हैं शब्द, तो वी आर बेसिकली अ वेरी गुड सेल्समैन। तो आपको किस तरह से अपने इसको बहुत अच्छी तरह से प्यार से मार्केट करना चाहिए। तो होलिस्टिक मॉडल ऑफ लीडरशिप, इसमें तीन बातें हैं, एक है विजन, लीडरशिप में विजन बहुत जरूरत है। नंबर टू इज मेथडोलॉजी, राइट? आपको किसी को भी ये पीपीटी चाहिए तो मैं पांडिमणि भाई को या जय कुमार भाई को दे दूंगा, तो आप उनसे ले सकते हैं, ठीक है? तो आप मेहनत नहीं करिए, तो आई विल गिव, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव इट टू देम। आपको जिनको चाहिए उनको, किन किन को ये पीपीटी चाहिए वो हाथ उठाए, आजू बाजू कोई सो गया होगा तो बुला लीजिए, ठीक, दे देंगे, राइट? एंड वन मोर थिंग इज, इफ यू आर अ फैकल्टी ना, तो ये बात जरूर देखना, वैल्यूज के बारे में हम कितना बोलते हैं, लेकिन वैल्यूज के लिए ना अपनी बातों को ना पकड़ के नहीं रखना, लेट इट फ्लो, जितनों को देना है आप दो, क्योंकि ये जो सारा इनपुट है ना ईश्वर दे रहा है हमको, कोई अपन ने, हाँ आपने पीपीटी बनाया होगा, लेकिन कभी पकड़ के नहीं रखो, अगर मैंने इसको दे दिया पता नहीं ये सब जगह यूज करेगा, नहीं, नेवर होल्ड इट, लेट इट फ्लो। इसे ये जो मैं दिखा रहा हूं, मैं आपको बहुत प्यार से मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप लिखे नहीं, बस इसको देखते रहे। 7 बजे तक मैं कंप्लीट करने की मैं कोशिश करता हूं, ठीक है? मेथोडोलॉजी इज बेसिकली मिशन, तो एक होता है विजन, दूसरा होता है मिशन, और तीसरा होता है एप्लीकेशन। तो विजन में हम पहले विजन को लेते हैं, हाँ, तो आई एम स्टार्टिंग विद अ नोन लीडर, डॉक्टर कलाम। तो डॉक्टर कलाम ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, वी शुड टीच अवर किड्स हाउ टू ड्रीम, और वो बहुत प्यार से कहते हैं, ड्रीम्स आर नॉट समथिंग दैट वी सी इन स्लीप, बट ड्रीम्स आर समथिंग विच शुडंट अलाउ अस टू स्लीप। सपने वो नहीं जो हम सोते हुए, हम सबको ये डायलॉग मालूम है। तो अब देखो कैसे हम लोग फ्लो कर रहे हैं, तो डॉक्टर कलाम के साथ साथ सारी विश्व कनेक्टेड है। जैसे आप डॉक्टर कलाम का से लीडर लोगों के सामने दिखाओगे ना, तो दे विल बी वेरी हैप्पी टू लिसन वॉट यू आर ट्राइंग टू से टू देम। फिर तो देखो एक बहुत सुंदर एक विजन उनका स्टेटमेंट था, एक अच्छी दुनिया बनानी है, बहुत सुंदर दुनिया। फिर धीरे से स्वर्ग ले आओ, जन्नत ले आओ, है ना, बहिष्ट ले आओ, कृष्णपुरी ले आओ। अब धीरे से अपने लीडर को सामने लेकर आओ। फिर आप कहो कि ब्रह्मा कुमारी इस मॉडल में परमात्मा इज अ लीडर, और किन्होंने रथ को यूज किया, ब्रह्मा बाबा, राइट? और मैंने ऐसे कैसे पीपीटी बहुत जगह यूज किया है, तो मैं स्टार्टिंग ही करता हूं, सो आई फील वेरी कंफर्टेबल इन डूइंग दिस। फिर उन्होंने क्या परिवर्तन देखा है, धीरे से इस पर आ गए। और बिलीव मी, ये मुझे लेक्चर लेने का समय कितना है, ओनली 45 मिनट्स टू 1 आवर, राइट। उसके अंदर मैं इसको करने की कोशिश कर रहा हूं, कभी कभी ये सवा घंटा या डेढ़ घंटा भी मिल सकता है। अब दूसरा है, अगर हम एक अच्छी दुनिया बनानी है तो व्हाट इज द मेथोडोलॉजी, तो मिशन, तो एक है नॉलेज, ज्ञान। धीरे सर ज्ञान में आ जाए, लेकिन ज्ञान डायरेक्ट नहीं दीजिए, उनको प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताइए। ये छोटे छोटे अक्षर में है तो आप इस अक्षर को आप पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन आप पीपीटी जब देखेंगे ना तो इट्स लॉर्ड मैकलेस एड्रेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट 1835, आज से 180 वर्ष पहले की कहानी है कि उस समय गुरुकुल सिस्टम को, स्पिरिचुअलिटी को किस तरह से चेंज किया। और जब भी आप पीपीटी बनाते हो, आप देखो पीपीटी बहुत कम अक्षर लिखे होने चाहिए, देखो बहुत बड़ा लिखिए, एक फोटो लीजिए, जो आपको बोलना है बोलिए। लेकिन अगर आप पीपीटी में बहुत सारी चीजें लिख देंगे ना, बहुत मुश्किल है, राइट। लेकिन कुछ जगह आपको जरूरत पड़ता है, जैसे बहुत सारे वैल्यूज लिखना, दैट इज ओके, लेकिन उसको एक एक वैल्यू को भी आप अलग अलग ले सकते हो। लेकिन दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ पुटिंग अप योर पीपीटी, इमेज हो, बड़े अक्षर हो, ताकि पीछे वाला भी इसको देख सके। अब ये देखो, ये आपको पढ़ने में ही नहीं मिलेगा, अगर आपने ऐसे पीपीटी बनाए तो कैसे समझ में आएगा ना, लोगों के आंखों में स्ट्रेन होता है। तो ये आप बाद में उनको बोल सकते। अब देखो होलिस्टिक लीडरशिप पैरामीटर्स, अब इसमें मुझे बहुत सारा डाटा लेकर आना था, तो मैंने कैसे लेकर आया देखिए। आप में से भी अगर इसको कुछ इंप्रूवमेंट करने की विधि बता सकते तो जरूर करना। एक होता आईक्यू, मैं इस पर डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ईक्यू और एसक्यू, राइट। आईक्यू इज जनरल नॉलेज, ईक्यू इज नॉलेज। फिर उनसे पूछो, अब देखो केनेस्थेटिक्स में आप कैसे आते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल नॉलेज एंड नॉलेज। तो आज जो बहन बता रही थी ना, एग्जैक्टली द सेम थिंग। जनरल नॉलेज वो इंफॉर्मेशन होता है जो परिवर्तनशील है, बट नॉलेज विच इज एब्सोल्यूट। मैं इसके डिटेल में नहीं जाता हूं क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है। अच्छा, आईक्यू अगर जनरल नॉलेज है, ईक्यू नॉलेज है, तो एसक्यू क्या होगा, स्पिरिचुअल नॉलेज। वाओ, इफ आईक्यू इज जनरल नॉलेज, ईक्यू इज नॉलेज, व्हाट इज एसक्यू। मैं आपको मदद करता हूं, इट स्टार्ट्स विद द अल्फाबेट डब्ल्यू, विजडम। विजडम इज अप्लाइड नॉलेज, जो नॉलेज मिला उसको जब हम जीवन में अप्लाई करते हैं। फिर एक अच्छा डायलॉग लिख दीजिए, आप सभी बोलिए, सभी बोलिए, जनरल नॉलेज इज प्राउड दैट इट नो सो मच, विजडम इज हम्बल दैट इट नीड्स टू नो सो मच। ठीक है ना, तो कभी कभी हमको बहुत नॉलेज है, इसका भी हमको अहंकार नहीं होना चाहिए, दैट्स ओके। अब तीसरा है नॉलेज ऑफ द सेल्फ सुप्रीम, फटाफट बहुत प्यार से आत्मा का ज्ञान सुनाइए, टक 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 करके सब सुना दीजिए, बहुत सारे लीडर्स को दिखा दीजिए, ये सब मैं आपको देने वाला। हाँ, पहुंच जाइए अपने मंजिल पर, वाह आत्मा का हो गया, बीके भाई इज वेरी हैप्पी, वेरी गुड स्वामी भाई, ऐसे ही होना चाहिए। और यही ज्ञान तो सुनाना है उनको, राइट, एब्सोल्युटली राइट। अब इसके बाद मैं परमात्मा पर चला जाता हूं, वो मैं आगे फिर उनको बताओ जो उनकी मैनेजमेंट का विजडम है। दिस इज द यू नो अंडरस्टैंडिंग द फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट, हर एक आत्मा मैन अ जिम, हर आत्मा हीरा है। गौतम बुद्धा बिकेम, कहते एनलाइटेंड, एनलाइटमेंट का मतलब होता है ही रियलाइज दैट ही इज एनर्जी इन लाइट फॉर्म। उनको बहुत प्यार से आत्मा के साथ गुणों के बारे में बताइए। अब एप्लीकेशन, अब बस इसका मैं दो एप्लीकेशन बताता हूं। फर्स्ट एप्लीकेशन इज हेल्थ। आप में से कितने भाई बहन है जिनको हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरा हाथ उठाएं। आजू बाजू कोई सो गया होगा तो बुला लीजिए, बार बार बोलना पड़ता है, सो वी कीप ऑन टेलिंग अगेन एंड अगेन, राइट। क्यों जरूरत है, क्योंकि सुना ना, जान है तो, थोड़े जोर से बोलिए, जान है तो। हाँ, मैं एक बार इंडियन नेवी को प्रोग्राम कर रहा था, जब मैंने कहा जान है तो, एक कैडेट खड़े होकर कहते सर जहाज है, एंड द कमांडेंट वाज वेरी हैप्पी, राइट आंसर, राइट आंसर। अब जैसे ही मैं इसको लेकर आता हूं, अब मैं क्या करता हूं, नाउ आई एम ब्रिंगिंग द, अभी ऑडियो अभी तक बोला, धीरे से आपको वीडियो पर लेकर जा रहा हूं, तो यू शो देम एन गुड एप्लीकेशन। तो हेल्थ का एप्लीकेशन ऑफ मेडिटेशन, तो यू शुड ऑल हैव दिस प्रेजेंटेशन के साथ साथ ना, आप एक प्रेजेंटेशन हमेशा रख सकते हैं। और आपके ऑडियंस में अगर कोई साइंटिफिक या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का होगा ना, तो उनको आप जरूर ये दिखा सकते हैं। मैं हमेशा दिखाता हूं, ए वेरी वंडरफुल रिसर्च, आप तालियां जरूर बजाना, मेरे लिए तालियां नहीं भाई जी, हां जोर से तालियां बजाइए। राइट, तो यहां पर हम सभी को पता होगा जो अभी कैड का जो बहुत सुंदर प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इस प्रोजेक्ट का बहुत सुंदर रिसर्च हुआ है थैंक्स टू बाबा स्वीट चाइल्ड, थैंक्स टू डॉक्टर सतीश गुप्ता, और उसका प्रेजेंटेशन डॉक्टर कलाम ने अपने विद्यालय में दिया है। कितना अच्छा इजी है, सारा का बोलो, बीच बीच में दिखाते रहो, डॉक्टर कलाम देखो राजयोग मेडिटेशन से क्या फायदा होता है, ये आप बोलेंगे तो कोई नहीं महसूस करेगा, डॉक्टर कलाम को सामने लेकर आओ ना, और कितनी अच्छी आत्मा है, विशेष आत्मा। जीना है तो ऐसे ही जियो, जाना है तो जैसे डॉक्टर कलाम की तरह जाओ। बस बहुत प्यार से लास्ट दिन आईएम शिलोंग के बच्चों से मिल रहे हैं, टाटा बाय बाय कर रहे हैं, अंत समय तक शिक्षक, और धीरे धीरे आराम से बैठे लेटे और ओम शांति। क्या जाना है तो ऐसे जाओ ना, राइट? इट्स अ ब्यूटिफुल इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस, एंड हिज बाबास वेरी स्वीट चाइल्ड। और उन्होंने जो सेवा की, इतनी वंडरफुल सेवा की। मैं एक बार साउथ में प्रोग्राम कर रहा था, तो मैं उस दिन का न्यूज़पेपर देख रहा था, तो डॉक्टर कलाम हैड कम टू दैट पर्टिकुलर प्लेस इन फॉर सम अदर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम एक दिन पहले। तो मुझे लोगों ने कहा कि यस्टरडे डॉक्टर कलाम वॉज हियर, तो मैं उनका पेपर रिपोर्ट पढ़ रहा था, मुझे इतना अच्छा लगा उस पेपर रिपोर्ट में, कोई और आध्यात्मिक संस्था में उन्होंने ब्रह्मा कुमारी का राज्यों का मेडिटेशन का जिक्र अपने स्पीच पे किया, और वो पेपर में मैंने खुद पढ़ा। दैट्स अ ब्यूटी। तो इसमें ये पूरा 34 मिनट्स का प्रेजेंटेशन है, आप जैसे ही ऑडियंस को दिखाते हो दे विल बी सो हैप्पी। तो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन। अब दूसरा एप्लीकेशन क्या है ऑफ राज्यों का मेडिटेशन? द सेकेंड एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल एप्लीकेशन ऑफ राज्यों का मेडिटेशन इज, वन इज हेल्थ, और सेकेंड जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड दैट इज इंजीनियरिंग। ओके, द फर्स्ट इज हेल्थ और दूसरा इंजीनियरिंग। और इंजीनियरिंग में मैं आजकल पता है लोगों को क्या दिखाता हूं, और इससे मुझे योग सिखाना बहुत ईजी हो जाता है। तो देखो मैं वीडियो यूज कर रहा हूं और अपने विद्यालय का वीडियो यूज कर रहा हूं, राइट? जो हमारे विद्यालय में बनाया गया है, तो एक बहुत अच्छा वीडियो, आप ये वीडियो सब मिल जाएगा। तो इसमें एक बहुत सुंदर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, और मुझे ये प्रोजेक्ट के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी है। इट इज कॉल्ड एज इंडिया वन सोलर प्रोजेक्ट। आप में से कितने लोग हमारे वो 34 एकर्स ऑफ सोलर प्रोजेक्ट देखे हैं वो जरा हाथ उठाएं, किन्होंने नहीं देखा वो हाथ उठाएं। हाँ, तो आप लोग कभी भी टाइम मिलेगा ना तो जरूर जाना। मैं चाहता हूं वो 2 मिनट का वीडियो देखें। और सारे विश्व के लीडर्स, रिसेंटली हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, हैड गॉन टू यूनाइटेड नेशंस, और वहां करीब विश्व के 200 लीडर्स वहां पर इकट्ठा थे, और उनका सबसे बड़ा जो चिंता का विषय था वो था एनवायरमेंट। और उसके बाद इंडिया टुडे का एक रिपोर्ट मैंने देखा, जहां पे नरेंद्र मोदी जी का स्पीच के साथ साथ 10 ऐसे विश्व में कार्य चल रहे हैं जिससे इस विश्व को बचाने का काम चल रहा है, और उसमें से पांचवा में ब्रह्मा कुमारी का नाम है, वो सोलर प्रोजेक्ट। जैसे आप फैक्ट्स लोगों के सामने रखते हो, तो बड़े बड़े इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में आप ये वीडियो को दिखाइए, वो झुक जाएंगे, नतमस्तक हो जाएंगे। एक आध्यात्मिक संस्था, सोलर थर्मल पावर प्लांट, इट्स सो ब्यूटीफुल। और सारे बाबा के बच्चे जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कितनी ना दुआएं मिलेगी, और बहुत चुनौतियों के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। मैं पिछले हफ्ते भी मैं वहां गया था, जैसे मैं भाई के साथ मैं बैठा, उनके सारे टीम से मैं बहुत कुछ ही समझने की कोशिश कर रहा था। अब देखो धीरे धीरे वीडियो दिखाने के बाद मैं लोगों को कहां तक पहुंचा रहा हूं, मेडिटेशन। दिस इज राजयोग का मेडिटेशन। तो आप वो क्या होता है, सूर्य का प्रकाश वो पैराबोलिक कॉन्सेंट्रेटर पर आता है, पूरा उस सूर्य का प्रकाश को खींचता है और पैराबोलिक कॉन्सेंट्रेटर से वो पाइपलाइन पर जाता है, उससे स्टीम बनती है और वो टर्बाइन को रोटेट करता है। ठीक है, राजयोग का मेडिटेशन भी बस यही है, वो ज्ञान सूर्य परमात्मा के एनर्जी को, आत्मा जो पैराबोलिक कॉन्सेंट्रेटर है उस पर फोकस करिए और जहां पर आपको उसको अप्लाई करना है अप्लाई करिए। दिस इज राजयोग का मेडिटेशन। बात लोगों को समझ में आ जाती है, सो इजी। कैसे करना है ये कल का हमारा टॉपिक है, लेकिन उसके पहले मैं आपको उसका लास्ट मेरा पर्सनल एप्लीकेशन में बताकर मैं वाइंड अप करूंगा। कैन वी सी द पीपीटी? और उसके बाद जब आपने ये दो एप्लीकेशन बता दिया तो ऑडियंस इतनी खुश होती है, उनको बात समझ में आ जाती है। यस, और फिर उसमें थोड़ा सा स्नेह प्यार की बातें बता सकते हैं, वो मां की कहानी बहुत पॉपुलर है वो सुना सकते हैं। उसके बाद लास्ट स्लाइड जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, अब उनको मैं बताना धीरे से राज्यों का मेडिटेशन कराने के पहले। हाँ, फिर उनको मैं ये हमेशा ये दिखाता हूं, राइट। और ये दिखाने के पहले मैं आपको एक लास्ट बात बताकर, क्योंकि वैल्यूज इज ऑफ ऑल लव। अच्छा, मैं आपको एक लास्ट एक इनपुट देकर मैं वाइंड अप करूंगा। देखिए, जो जब हम स्कूल्स में जाते हैं ना, तो स्कूल में ये वैल्यू एजुकेशन जो है ना, ये कब चलेगा पता है? अगर आप जाकर ये बोलते हैं, मेरा ये अपना पर्सनल ओपिनियन है, इस पर जरूर विचार करना, मेरा अपना ये अनुभव ये कहता है कि अगर आप किसी भी स्कूल कॉलेज में जाकर कहोगे कि आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट दीज वैल्यूज, मेरा अनुभव कहता है कि वो परमिशन नहीं देंगे, देते भी नहीं है। उनको लगता है हमारी टीचर्स तो ये बता रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है, उनकी मॉरल साइंस के क्लासेस होते हैं। हमको जो अलग रीति से जो कर सकते हैं ना, व्हाट वी कैन डू, ये थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन ये वर्कआउट करेगा। हम सभी भी एमबीए एमएससी डिप्लोमा पोस्ट का जो डिप्लोमा किए हैं, अगर हम एक टारगेट ऑडियंस पकड़ते हैं सातवीं आठवीं नौवीं के बच्चों को, अगर हम तीन क्लास के बच्चों को ले, तो पता क्या करना चाहिए हमें? ये करना चाहिए हमें वैल्यू एजुकेशन के साथ साथ, व्हाट वी नीड टू डू इज अ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। मतलब क्या है, सातवीं कक्षा के आप सारे किताबों को लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जो भी पढ़ाते हैं, उनके उस सिलेबस को पढ़कर, उस सिलेबस पढ़ाते पढ़ाते आप वैल्यूज को कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं। जिस दिन हमारी बीके फैकल्टी ये करने लगेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके सभी टीचर्स प्रिंसिपल्स आपको बुलाएंगे। मतलब क्या है, सपोज न्यूटन्स लॉ, A body continues in a state of rest or uniform motion until unless acted by some external force. और तीसरा जो है action and reaction. ये जो है अगर आप इसको कोई ना कोई value के साथ जोड़कर अगर आप सिखाएंगे, आपको वो रटने की जरूरत नहीं है। सातवीं कक्षा का syllabus हम MBA, MSc, diploma, post graduate diploma वाले भाई बहने बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। अगर कोई हमें syllabus समझ में नहीं आ रहा तो वहां के शिक्षक से मिले और हमको बताए कि ये कैसे हम इसका application क्या है, बस उसको वैल्यू के साथ जोड़े। अच्छा, पूरा सिलेबस भी कवर करने की जरूरत नहीं है, बस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो इजी है वो सिलेबस को पढ़ाते पढ़ाते आप वैल्यूज को इंटीग्रेट करो। मेरे पास अगर वक्त होता था तो मैं पूरा सब्जेक्ट्स का मैं हमने बनाया है, थोड़ा थोड़ा बनाया है। जब हम लोग स्टार्टिंग में, मुझे याद आता आज से 12 वर्ष पहले जब हम लोग वैल्यू एजुकेशन स्कूल के लिए जाते थे, तो मैं केमिस्ट्री पढ़ाता था बच्चों को, केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते मैं वैल्यूज को जोड़ते थे हम लोग, हमारी टीम थी वो पूरी। हमको पता है एक्वायर्ड वैल्यूज कौन से हैं, इनहेरिटेड वैल्यूज कौन से हैं, नेचुरल वैल्यूज कौन से, सब हमको पता है। हम उनका सिलेबस को लेकर, हमारे लिए चैलेंज पता क्या होता है, 7th स्टैंडर्ड में हमने वैल्यूज बोल दिया, 8th स्टैंडर्ड में टीचर कहती है अब फिर से, अब मैं क्या बोलूं, नई कहानी कहां से ढूंढूं। 7th स्टैंडर्ड में आपने उनके सिलेबस को लेकर वैल्यूज को इंटीग्रेट किया, 8th स्टैंडर्ड का उनके वैल्यूज को लेकर इंटीग्रेट किया। इंजीनियरिंग टीचर के स्वरूप में जब मैं क्लास में जाता था तो हम क्या करते थे, सारे इंजीनियरिंग पढ़ाते पढ़ाते उनको वैल्यूज के साथ जोड़ते थे। मेरा टॉपिक था फर्स्ट चैप्टर इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाज इक्विलिब्रियम, फ्रिक्शन, काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स, काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज। तो मुझे वो टॉपिक पता था, उस टॉपिक के साथ मैंने वैल्यूज को जोड़ा। जिस दिन हम लोग इस सिचुएशन पर काम करें तो 100% काम आएगा। मैं आपको युद्ध भूमि में लेकर जाने के पहले, कुछ डिफेंस के फोटोग्राफ्स को लेकर जाने के पहले, एक मिनट आपको सोचने पर मैं वो करके मैं इनपुट देकर मैं वाइंड अप करता हूं, राइट। एंड वी विल डू अ जस्ट स्टैंडिंग 2 मिनट्स मेडिटेशन। महाभारत के युद्ध में कहते हैं अर्जुन का मन कमजोर हुआ, और आज तक हमने जो पढ़ा था, हमको ये लगा था कि अर्जुन का मन इसलिए कमजोर हुआ क्योंकि उसके सामने भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य थे। सोचने की बात यह है, अर्जुन का मन ना भीष्म पितामह को देखकर एक्चुअली कमजोर नहीं हुआ, क्योंकि अर्जुन को पता था युद्ध जरूर होगा, उसको यह भी पता था उसके सामने कोई हो या ना हो एक व्यक्ति जरूर होगा और वो है भीष्म पितामह। यस और नो? इसलिए 12 वर्ष की वनवास में अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र तपस्या करके ब्रह्मास्त्र को लेकर आए थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं फिर अर्जुन का मन कमजोर क्यों हुआ? भगवद गीता में बहुत सारे कारण बताते हैं, लेकिन जब रियल कारण पता है अर्जुन का मन कमजोर क्यों हुआ? यस बहन जी बताइए। हां, दैट इज एन आंसर। अर्जुन का मन भीष्म पितामह को देखकर कमजोर नहीं हुआ, अर्जुन का मन पता है कहां कमजोर हुआ? सामने देखते देखते अर्जुन पीछे मुड़ा, और जैसे अर्जुन पीछे मुड़ा तो उनकी दृष्टि पांडव सेना पर पड़ी, और पांडव सेना में सबसे पहले दृष्टि अर्जुन की पड़ी अभिमन्यु पर। अर्जुन का मन भीष्म पितामह के युद्ध के लिए तैयार था, लेकिन अर्जुन का मन खुद का बेटा अभिमन्यु उस युद्ध में आएंगे उसके लिए उसका मन तैयार नहीं था। पूरे भारत में हम इतने भाई बहनों से मिलते हैं जो इतने सफल है अपने क्षेत्र पर, लेकिन जैसे उनके बच्चों के बारे में कहें दे आर हेल्पलेस। आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, अकेले में वो मिलते तो यही कहते, स्वामी भाई बस आप मेरे बेटे को थोड़ा सुधार दो। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप सभी भी जो माताएं बैठे हैं सारा दिन बाबा के साथ, बाबा मेरे राजा बच्चे को थोड़ा सुधार दो ना, हमारा भी यही खेल है, हमारा भी युद्ध यही चल रहा है। यस, इट्स ऑल विद अभिमन्यु। वाह, तो देखो कितना आपका फील्ड है, आपका तो सेवा बढ़ती जाएगी ना बहन जी। अच्छा मैं लास्ट क्वेश्चन पूछता हूं। हम लोग जब लोगों को ज्ञान सुनाते हैं ना तो भगवद गीता का हम आध्यात्मिक रहस्य बताते हैं। हम कहते हैं पांडव सेना अच्छे लोग हैं, कौरव सेना बुरे लोग हैं, और हम लोग उसका पूरा व्याख्यान करते हैं, है ना। युधिष्ठिर जो युद्ध में स्थिर रहता है, अर्जुन जो ज्ञान का अर्जन करता है, भीम, फिर धन का दुरुपयोग करने वाला दुर्योधन। अच्छा इस पूरे कैरेक्टर्स में बताइए अभिमन्यु कौन है? अर्जुन का बेटा। वाह, व्हाट अ गुड जनरल नॉलेज, ग्रेट, अर्जुन का बेटा है। अरे भाई उसका मैं आध्यात्मिक रहस्य पूछ रहा हूं। जो अभिमान को मार चुका है, दैट्स अ गुड आंसर, नाउ दैट्स अ स्पिरिचुअल आंसर, दैट्स अ डिवाइन आंसर। सच्ची बात बताएं, उस पूरे कहानी में ना अभिमन्यु को कभी अभिमान कभी दिखाया नहीं है, कभी नहीं दिखाया। वो तो एक बहुत प्यारा सा बच्चा है जिनको श्री कृष्ण और अर्जुन से प्रति बहुत प्यार था। पता है ये अभिमन्यु कौन है? ये अभिमन्यु मुझे लगता है आप सबको पता है, कोई नई बात नहीं है। मुझे कभी कभी लगता है अभिमन्यु वो बच्चे हैं जो बाबा के बच्चे भी हो सकते हैं, बाहर वाले भी हो सकते हैं, जो कुमार और कुमारियां हैं। और आज जो सबसे बड़ा चक्रव्यूह है जिसमें अभिमन्यु बाबा के कुमार कुमारियां एंट्री कर सकते लेकिन बाहर नहीं निकल सकते, और वो है इंटरनेट। ऐसा दलदल है, जो एंट्री किया तो किसी ने मुझे कहा अभिमन्यु अर्थात अभी अभी मन न्यू चीज सर्च करता रहता है, वो अभिमन्यु। अभी अभी मेरा मन इंटरनेट में न्यू चीज जो सर्च करता है वो अभिमन्यु है। अरे जमता है? यस। जिस बहन ने मुझे बताया, मैंने कहा मैं आपको भारत रत्न तो नहीं पद्म भूषण के लिए जरूर रिकमेंड करता हूं। क्या बहन जी, वाह बहन जी वाह। यस, और मैंने देखा है। और ये अभिमन्यु की कहानी सुनोगे ना, बहुत वंडरफुल कहानी है। अभिमन्यु को कहा गया था जब वो चक्रव्यूह की रचना रची गई ना, तो उसकी रचना भीष्म पितामह ने नहीं किया, उसका रचना गुरु द्रोणाचार्य ने किया। और आज आप समाज में देख सकते हो सारे बच्चे अपना जो रिसर्च और प्रोजेक्ट जो कर रहे हैं वो गूगल में कर रहे हैं। पूरी इतनी सारी सरकारें फ्री लैपटॉप दे रही है। मेरे को इस लैपटॉप और कंप्यूटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मोबाइल से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुद एक टेक्निकल बैकग्राउंड का हूं, मैं भी यूज करता हूं। लेकिन उस कहानी में बताया गया कि जब अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर गया ना, तो उन्होंने क्या किया पता है? इस चक्रव्यूह को भेद करने के लिए सिर्फ दो लोगों को पता था, एक थे श्री कृष्ण और दूसरा था अर्जुन। तो उन्होंने क्या किया, ये अभिमन्यु को अंदर लेके आने के पहले इन्होंने क्या किया, इनको दूर लेकर गए। कहानी में आपने पढ़ा है, उसी तरह कभी कभी मैं यज्ञ के कुमार कुमारियों को देखता हूं और मुझे आश्चर्य होता है, और मुझे लगता है ये क्लियर अभिमन्यु है। जब दीदी उनसे पूछते हैं गुरुवार के समय जो भोग लेने आता ना, दीदी बहुत प्यार से उनसे पूछते हैं, अच्छा आप एक हफ्ते से क्यों नहीं आए मुरली सुनने के लिए? वो कहता है मैंने व्हाट्सएप में मुरली सुना था। जिस दिन मैं वो सुनता हूं यही होता है, एंट्री करते हैं विद व्हाट्सएप कि नहीं मैं मुरली व्हाट्सएप में सुनता हूं, मैं क्यों सेंटर पर आऊं। उस दिन समझ जाने का ये दूर हट रहा है। बाहर वाले के कुमार कुमारियों को बचाने से पहले हमें अपने यज्ञ के कुमार कुमारियों को बचाना है. वी हैव टू सेव देम, अदरवाइज आने वाली ये पीढ़ी जो है ना इतनी कॉन्फ्लिक्ट में चली जाएगी. और मैं आपको टॉपिक देता हूं जिस टॉपिक पर मैं खुद काम कर रहा हूं. मैं ओपन आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं इस टॉपिक पर काम करो कि जब हम क्लास में एंट्री करें और टीचर्स को यह कहें कि हमारा जो सेशन है इस सेशन में आपके बच्चे को इंटरनेट और ये सारे गैजेट के एडिक्शन से आप बच सकते हो. ऐसा मेरा मॉड्यूल है. मैं बताता हूं वो नतमस्तक होकर आपके चरण ढूंढने लगेंगे. और अगर आपने उनके 60 बच्चों में से अगर 3, 2, 1 बच्चे को भी आप उस चक्रव्यूह से बचा सके तो एज ऑफ नाउ मुझे नहीं पता कि मैं इसके लिए स्टार्टिंग कैसे करूं, एंडिंग कैसे करूं, स्क्रिप्ट मुझे नहीं पता. मैं चाहता हूं आप लोग इस टॉपिक पर काम करो, सोचो. और जिस दिन ये टॉपिक बन गया तो आप वो उसको मार्केट करो. ब्रह्मा कुमारी इस मॉडल ऑन हेल्पिंग अवर अभिमन्यु फ्रॉम चक्रव्यूह ऑफ इंटरनेट मोबाइल गैजेट्स. दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट. इस टॉपिक पर हम सबको विचार करना चाहिए. और इसका सोल्यूशन एक ही है. इसका सोल्यूशन है दैट इज राजयोग मेडिटेशन. लेकिन उन बच्चों को हम कैसे बताएं इस पर जरूर विचार करना चाहिए. मैं कुछ युद्ध भूमि के फोटोग्राफ्स बताकर मैं वाइंड अप करूंगा. माय लास्ट 3 मिनट्स. कैन वी सी द पीपीटी? जान है तो जहाज है. देयर आर पीपल फ्रॉम द डिफेंस फोर्सेस. गुड न्यूज, वुमेन एम्पावरमेंट की बात चल रही थी पिछले सेशन में. भारत सरकार को बहुत थैंक्स. अभी हमारी बहनें कैन बिकम फाइटर पायलट्स इन द इंडियन एयरफोर्स. ये हमारी वुमेन एम्पावरमेंट की बात है. माई गुड फ्रेंड्स कर्नल सती, मेजर नितिन फ्रॉम द इंडियन आर्मी, हमारे स्क्वाड्रन लीडर अशोक गाबाजी विद कर्नल सती. कर्नल सती कुमार है, राइट नाउ पोस्टेड इन दिल्ली. बाबा का बच्चा है मेजर नितिन. अमन सेतु, इस तरफ इंडिया उस तरफ पाकिस्तान, बीच में नो मैन्स लैंड और नीचे से झेलम नदी क्रॉस करती है. कर्नल सती भी राइट नाउ दिल्ली में है. मेजर जनरल बिपिन रावत. अब देखो मैं फोटोग्राफ्स क्यों दिखा रहा हूं, मैं आपको बताता हूं. आगे बढ़ते हुए ये हमारे कुछ दोस्त हैं विकास, सीआरपीएफ लद्दाख, और ये विश्व का सबसे ऊंचाई का युद्ध भूमि सियाचिन, इंडिया पाकिस्तान चाइना के बॉर्डर पर, राइट. और यहां पर एक ऐसी जगह है जो 18,000 फुट से लेकर 28,000 के फुट पर. मैं लीडरशिप पे ये लास्ट स्लाइड पर आकर रोकता हूं और फिर मैं सारे लीडर्स जो मेरे सामने बैठते हैं उनको मैं पूछता हूं, अच्छा बताइए अब इस 18,000 के फुट से लेकर 28,000 के फुट पर बताइए हमारे जवान और ऑफिसर्स कौन सा व्यायाम कर सकते. एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वॉकिंग नहीं कर सकते, प्राणायाम तो बिल्कुल बोलना ही नहीं. वहां पर अगर आपने गहरी श्वास ली ना फिर वहीं से आपको ऊपर जाना पड़ेगा. टेम्परेचर इज वेरी लो, प्रेशर इज वेरी लो. तो प्लीज समझिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन योग एंड योगा. योगा शारीरिक व्यायाम है, मैं भी करता हूं, आप लोग भी करिए और अच्छा है. लेकिन जो राजयोग है ये मन का व्यायाम है. मन दुरुस्त तो तन दुरुस्त. और जैसे आप ये सीन दिखाते हो ना पीपल विल बी वेरी हैप्पी टू एक्सेप्ट इट. यस, वहां शारीरिक व्यायाम नहीं कर सकते, मन का व्यायाम. एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट. कल मेरा एक सेशन है ऑन मेडिटेशन एंड दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक. वहां हम मेडिटेशन पर जरूर जरूर आएंगे. लेकिन आज हम सभी खड़े होकर आई टेक यू टू सियाचिन. सभी खड़े हो जाए. तो सभी महसूस करिए कि हम कल के मुरली में था रूहानी जिस्मानी आर्मी, रूहानी सेल्वेशन आर्मी. किस में था कल के, आज के? बाबा सॉरी वीक मेमोरी है. अच्छा, क्योंकि मैं रात को भी पढ़ लेता हूं सुबह भी पढ़ लेता ना, तो मुझे कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि वो कब की मुरली था. आज बाबा ने कहा सेल्वेशन आर्मी, राइट. तो हम सभी सेल्वेशन आर्मी है और सेल्वेशन आर्मी में हम सभी एक चैतन्य शक्ति है. तो एक काम करना, खड़े होकर हम ये फील करेंगे कि हम सभी रूहानी सैनिक है, हम सेल्वेशन आर्मी है. और मैं आपको राष्ट्रगीत के द्वारा आई विल टेक यू टू सियाचिन. तो क्योंकि हम सेल्वेशन आर्मी है, यहां खड़े होकर महसूस करना कि उस परम है ना, वो 18,000 से 28,000 के फुट में. आपको पता है अपनी माउंट आबू कितने फीट पर है? 5,000 फुट पर. और वहां पर 28,000 फीट पर, 5,000 का कितना ऊपर. तो वहां जब हम गए ना, सॉरी मैं आपको खड़ा करके रखा हूं लेकिन मैं आपका एक मिनट और टाइम लूंगा. वहां जब हम गए ना तो बैठ जाइए दीदी, बैठ जाइए, आप बैठ सकते दीदी, नो इश्यूज, आप बैठिए, कोई प्रॉब्लम. किसी को अगर बहुत तकलीफ है ना, नथिंग टू वरी, ये अपना विद्यालय है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको तकलीफ है तो आप बैठ सकते. राष्ट्रगीत में भी अगर आपको लग रहा है ना बैठे तो इट इज नॉट डिसरिस्पेक्ट योर फिजिकल सिस्टम इफ इट डजंट अलाउ. बस मैं आपका एक मिनट लूंगा. मैं अपना अच्छा अनुभव सुनाता हूं. जब मैं वहां पे गया ना तो हमारे साथ एक कमांडर शिव सिंह भाई थे. तो उन्होंने मुझे पूछा, स्वामी भाई आपकी इच्छा पूरी हुई? तो मैंने कहा उस हाईएस्ट बैटलफील्ड में, क्योंकि मैं आर्मी में ज्वाइन करने वाला था, दो बार रिजेक्टेड हुआ, ये मेरी सत्यता कहानी है, लेकिन बाबा ने मुझे वहां पे लेकर गए। मैंने कहा शिव सिंह भाई आज मुझे बहुत खुश है, मैं बहुत खुश हूं। बोला कोई और इच्छा बाकी है? मैंने कहा शिव सिंह भाई हम फिर से आएंगे, और अगली बार आएंगे ना तो उस हाईएस्ट बैटलफील्ड पर इंडिया पाकिस्तान के चाइना के संगम पर हम लोग बाबा का झंडा लहराएंगे, राइट? बोला अच्छा क्यों? मैंने कहा जब हमारे भारत के जो जवान देखेंगे ना वो कहेंगे अरे मेरा बाबा आ गया, वंदे मातरम, है ना, और पाकिस्तान वाले देखेंगे खुदा दोस्त आ गया, और चाइना वाले देखेंगे चिंग चोंग चिंग बाबा। बाबा ने हमारी कितनी दृष्टि को बेहद बनाया, दैट इज द ब्यूटी ऑफ द स्पिरिचुअल नॉलेज। सॉरी मैं आपको खड़ा करके रखा, विल ऑल स्टैंड इन अटेंशन फॉर द नेशनल एंथम। हम बहुत प्यार से उनको देखकर, क्योंकि हम भी सैल्वेशन आर्मी है वो भी सैल्वेशन आर्मी है, तो उनको हम बहुत प्यार से दुआएं देंगे जो देश की रक्षा के लिए खड़े हैं। तो हम बहुत प्यार से बाबा को याद करें, और जब सियाचिन देखेंगे तो ये फील करेंगे कि वो सूक्ष्म वतन है, सूक्ष्म वतन के वैसे भी वो थोड़ा नजदीकी है। यस, वी सल्यूट द इंडियंस हु चूज टू ब्रेव द मोस्ट डिफिकल्ट बैटल फील्ड ऑफ द वर्ल्ड, द सियाचिन -53 21,000 फीट अप। शांति, आप सभी का बहुत बहुत दिल से थैंक्स। सॉरी मैंने आपका 18 मिनट एक्स्ट्रा लिया, लेकिन फिर भी आप बैठे रहे, आपका बहुत थैंक्स। ओम शांति।